गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेश तारिणे जयताम सुरतौ पंगोर्मम मंदमतेर्गति मत्सर्वस्व पदाम्भोजौ श्रीराधा मदन मोहनौ वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय उन्नीसवां अध्याय श्लोक एक से प्रारंभ करते हैं। राजोवाच श्री राजोवाच व्रतं पुंसवनं ब्रह्मान् भवता जदुदीरितां तस्य वेदितुमिच्छामि जेन विष्णुः प्रसीदति। श्री शुक उवाच शुक्ले मार्गशिरे पक्षे योषिद्भर्तुरनुज्ञया आरभेत व्रतमिदं सार्वकामिकमादितः निशम्य मरुतां जन्म ब्राह्मणाननुमन्त्र च स्नात्वा शुक्लदति शुक्ले वसीतालं कृतांबरे पूजयेत प्रातराशात् प्राग् भगवन्तं श्रियाशः अलं ते निरपेक्षाय पूर्णकामनमस्तु ते महाविभूतिपतये नमः सकलसिद्धये यथा त्वं कृपया भूत्या तेजसा महिनौजसा जुष्ट ईश गुणैः सर्वैः ततोऽसि भगवान् प्रभु विष्णुपत्नी महामाये महापुरुषलक्षणे प्रियेथा मे महाभागे लोकमातर नमोस्तुते। महाराज परीक्षित ने पूछा व्रता व्रत नियम पुंसवना पुंसवन नामक ब्राह्मण हे ब्राह्मण भवता आपके द्वारा जात जो उदीरिता उल्लेख किया गया तस्य उसकी विधि वेदितुं जानने की इच्छा में मैं इच्छा कर रहा हूं जेना जिस व्रत के द्वारा विष्णु सर्वव्यापक श्री भगवान प्रसीदति, अनुष्ठान करने वाले पर प्रसन्न हो जाते हैं। इधर कई दिनों से हम लोग पूर्ण सवन व्रत की बात सुन रहे थे, नाम सुन रहे थे। श्री कश्यप जी अपनी धर्मपत्नी दीति से कहते हैं कि हे देवी, यह व्रत है जिसका तुम्हें एक वर्ष तक अनुष्ठान करोगी तो तुम्हारा पुत्र इंद्र का अनुगामी बनेगा, देवता हो जाएगा। आंतरिक अर्थ यह था, बाहरी अर्थ था कि वो इंद्र की हत्या करेगा और असुरों का बांधव होगा। कई बार इसकी चर्चा की गई, लेकिन वो है क्या पुण्य समान व्रत अब तक पता नहीं चल रहा था। इसलिए महाराज परीक्षित प्रश्न करते हैं कि हे ब्राह्मण, हे वेद जानने वाले सुखदेव गोस्वामी, भवता जद पुंसवन व्रतम उदीरितम, आपके द्वारा जो पुंसवन व्रत की बात आई, तस् वेदितुम इच्छामि, मैं उसकी विधि जानना चाहता हूँ, क्या है पुंसवन व्रत। आपने कहा पहले कि जैन विष्णु प्रसीदति, इस व्रत से भगवान हरि प्रसन्न हो जाते हैं, विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। तो जिस व्रत को करने से विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं, उस व्रत को मैं जानना चाहता हूं, कृपा करके बताइए। बहुत सुंदर और स्पष्ट प्रश्न है। किसी भी क्रिया का परम लाभ है विष्णु को प्रसन्न करना। यदि भगवान प्रसन्न है किसी के कर्म से, तो उस व्यक्ति का जीवन वास्तव में सार्थक। और सब कुछ करके किसी व्यक्ति पर यदि कृष्ण प्रसन्न नहीं है, भगवान प्रसन्न नहीं है, तो उस व्यक्ति का कोई भी पुरुषार्थ, उसका धर्म कर्म सब कुछ व्यर्थ है। सकर्म हरितोषम जत, कर्म वही सार्थक है जो हरि को संतुष्ट करे, भगवान को संतुष्ट करे। यह जीवन का लक्ष्य है। ये व्रत की बात बताई जाएगी यहाँ पर। ऐसा करने वाले पर भगवान प्रसन्न होते हैं। वह व्रत बहुत कठिन नहीं है, भगवान की पूजा की प्रधानता है उसमें। भगवान का स्तोत्र पढ़ना, मंत्र जपना, प्रणाम करना, यही है पूर्ण समन व्रत। तो उसकी विधि पर सुखदेव गोस्वामी प्रकाश डालेंगे। बात पूछी जाए महाराज परीक्षित से कि आप क्यों सुनना चाहते हैं पूर्ण समन व्रत, आपको क्या आवश्यकता है, क्या करेंगे? तो करेंगे नहीं, अब तो उनके लिए 7 दिन का समय, 7 दिन का भी अब नहीं है, 6ठे स्कंध का अंत है, अब तो उनके पास 4-5 दिन का समय है, और इस साल भर करने के लिए व्रत। तो अपने लिए नहीं पूछ रहे, अन्य जीव जान जाए आपके मुखारविंद से और सौभाग्य से वे भगवान को प्रसन्न करने वाला ये व्रत करे, इसके लिए पूछ रहे हैं। जैन विष्णु प्रसिद्धति, विष्णु भगवान कृष्ण का एक नाम है, वे सर्वव्यापक हैं, सबकी रचना किए हैं, सबके आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, इसलिए उनको विष्णु कहते हैं। विशति सर्वत्र इति विष्णु, जो सब जगह हो, एक होते हुए भी सब जगह हो, उसको विष्णु कहते हैं। तो भगवान गर्भ समुद्र के अंदर हैं, क्षीर समुद्र के अंदर हैं, कारण समुद्र के अंदर हैं, इसके साथ सभी जीवों में विद्यमान हैं, बाहर से प्रकृति के रूप में सब जगह व्याप्त है, प्रकृति उनकी शक्ति है, इसलिए उनका प्रसिद्ध नाम है विष्णु। और ऐसे ही विष्णु का भक्त होने से किसी भी भक्त को, जो हरि का भक्त है, कृष्ण का भक्त है, तो उसको वैष्णव कहते हैं। वैष्णव विष्णु का आदमी, विष्णु से प्रेम करने वाला व्यक्ति। तो अवश्य यह बात सुनने लायक है कि भाई कौन ऐसा कर्म है, कौन ऐसा नियम है जिससे भगवान हरि प्रसन्न होते हैं, विष्णु प्रसन्न होते हैं। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सुनिए महाराज, ये कब से कैसे व्रत चालू करना चाहिए और क्या विधि है। निषेध तो बताए थे पहले, इसमें क्या क्या निषेध है उसकी चर्चा हुई थी, पर क्या करनीय है पॉजिटिव साइड नहीं बताए थे, तो बता रहे। शुक्ले मार्ग शिरे पक्षे जोषित भर्तुर अनुज्ञया आरभेत व्रतमिदं सर्वकामिकमादितः। मार्ग शीर्ष के प्रारंभ में ही यह व्रत करना चाहिए। सबसे पहले स्त्री जो किसी की पत्नी है तो अपने पति से आज्ञा ले, अनुज्ञा ले, कहे कि मैं ये व्रत करना चाहती हूं। स्त्री में उत्साह होना चाहिए भगवान के भजन का, भगवान की भक्ति का। वास्तव में भगवान ने जो शरीर दिया स्त्री को या पुरुष को, ये शरीर बहुत मूल्यवान है, बहुत। यह अन्य जीवों जैसा इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है। तो सबसे पहले वह अपने पति से अनुज्ञा ले, पूछे कि मैं व्रत करना चाहती हूं, आप मेरी मदद कीजिए। तो पति यदि वास्तव में पति होगा तो जरूर आज्ञा दे देगा, नाम भर का हस्बैंड होगा तब तो कुछ नहीं कर सकता है। यदि पत्नी स्वयं ही आग्रह करे कृष्ण के भक्ति के लिए तो कौन ऐसा पति होगा जो नहीं कहेगा हाँ ठीक ठीक बहुत अच्छा है। किसी की मति भगवान में आना यह बहुत कठिन है, और उस पर भी कोई स्त्री एक वर्ष का अखंड व्रत लेने जा रही हो तो कौन पति ऐसा होगा वैष्णव जो नहीं अनुज्ञा देगा, नहीं आज्ञा देगा। तो पहले जोशित को चाहिए, पत्नी को चाहिए कि भर्तुर अनुज्ञा, उनसे आज्ञा ले। और शुक्ल मार्ग शीर्ष के शुक्ल पक्ष में आदितः प्रतिपदा से ही, एकम से ही ये व्रत प्रारंभ करे। यहां पर सुखदेव गोस्वामी जो बता रहे हैं शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष या मार्ग शीर्ष, तो हमने सुना है जो गुजरात में प्रथा है, मास चालू होता है अमावस्या के बाद ही, तो वही विधियां दी गई। मार्ग शीर्ष के शुक्ल पक्ष में यह व्रत करे और फिर कार्तिक के अमावस्या को, पूर्णिमा को बंद करे। कैसे जोड़ेंगे वो हम लोगों के उत्तर भारत में महीने का प्रारंभ है कृष्ण पक्ष से मानते हैं प्रतिपदा से, और गुजरात में शुक्ल पक्ष से प्रारंभ मानते हैं। तो उनका महीना 15 दिन टाण करके चलता है, पीछे रहता है हमेशा। तो कहते हैं कि भगवान कृष्ण का जन्म श्रावण में हुआ था, है ना। हम लोग कहते हैं भाद्रपद में, मतलब भाद्रपद में, मतलब उनका 15 दिन पीछे चलता है। और श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी उसी प्रथा को प्रमाणित कर रहे हैं। मार्ग शीर्ष का अर्थ अगहन, पता नहीं आपके लोग अगहन भी समझते हैं कि नहीं, मार्ग शीर्ष समझते केवल जनवरी फरवरी आदि जानते हैं, अरे भागवत में तो ये चीज नहीं है। मार्ग शीर्ष कहते हैं अगहन के महीने को, ठीक कार्तिक के बाद जो चालू होता है। भगवान ने गीता में कहा है मैं सभी महीनों में अगहन का महीना मासाना मार्ग शीर्षो हो, इसका अर्थ है कि अगहन का महीना ये भगवान की विभूति है, इसे बहुत धर्म कर्म होते हैं, बहुत सी फसलें आती हैं, बहुत शुभ कर्म होते हैं। तो मार्ग शीर्ष के शुक्ल पक्ष में अर्थात महीने के शुरू में आदितः, आदि से ही मतलब एकम से ही यह व्रत आरभेत, इस व्रत का प्रारंभ करना चाहिए। कैसा व्रत है इसकी विशेषता बता रहे हैं, सार्वकामिकम, यह व्रत मनुष्य की समस्त कामनाओं को पूरा कर देता है। व्रत एक है लेकिन जीवन में जितने भी अच्छे अच्छे मनोरथ होंगे इस व्रत के अनुष्ठान से व्यक्ति का पूरा हो जाता है। ध्यान रखना चाहिए, मैं कई बार इस बात को कहता हूं कि श्रील सुखदेव गोस्वामी जिस मंच पर बैठे हैं, आसन पर बैठे हैं, और जो उनका व्यक्तित्व है, जो उनकी पर्सनालिटी है, प्रतिभा है, वो अद्भुत है। वे असत्य नहीं बोल रहे हैं, इसके लिए नहीं बोल रहे हैं कि करना चाहिए अतः फल बढ़ा करके कह रहे हैं। सर्वकामिकम का अर्थ सर्व काम पूरा हो जाता है, काम का अर्थ इच्छा, चाहे भक्त हो अभक्त हो कोई भी हो, सबके हृदय में अनेक इच्छाएं हैं, बहुत प्रकार की इच्छा है वास्तव में। तो महान से महान कठिन से कठिन इच्छाओं को भी यह व्रत पूरा कर देता है। व्रत पूरा क्या करते हैं, भगवान पूरा करते हैं, परंतु यह व्रत करने से विष्णु प्रसिद्ध थे, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्त की सारी इच्छाओं को पूरा कर देते हैं। सर्वकामी सर्वकामिका इस व्रत की विशेषता है। तो अगहन के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से मतलब प्रथमा तिथि से इसको प्रारंभ करना चाहिए। प्रारंभ करने के पहले क्या करना चाहिए, निशम्य मरुताम जन्म ब्राह्मणानुमंत्र। सबसे पहले मरुद गणों के जन्म की कथा सुननी चाहिए, ये ब्राह्मणों से सुनना चाहिए, वैष्णवों से। निशम्य व्रत करने में मूल चीज है भगवान की बात सुनना, निशम्य सुत्वा, सुनने से चित्त शुद्ध होता है और सुनने से मन भगवान में लगता है। श्रुत्वा तेजति दुर्मति, और सुनने से व्यक्ति दूषित बुद्धि का त्याग कर देते हैं। सबसे पहले सुनने के लिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं पहले बैठ करके, और मरुतम जन्म जो यहाँ सात दिन कथा चली है इसको सुने। यह नहीं कह रहे हैं कि अब सात दिन लगातार सुनता रहे, हो सकता है सात दिन पहले सुने, व्रत चालू करने से पहले सुने, सात दिन सुने चाहे दस दिन सुने या एक दिन सुने, खूब अच्छा से सुनना चाहिए। और इसके बाद ब्राह्मणों से अनुमति लेनी चाहिए, हमें व्रत करना चाहते हैं, वो लोग कहेंगे हाँ ठीक है आपके लिए ठीक है, आप कर सकती हैं, आप सफल हो सकती हैं, इसको करो। तो ब्राह्मण अनुमंत्र च ये करके तब व्रत चालू करने से पहले, जिस दिन चालू करना हो तो सबसे पहला काम है स्नान। स्नात्वा शुक्ल दति शुक्ले वसीताम वसीता अलंकृतांबरे। स्नान करना चाहिए, स्नान सबसे पहला नियम है, सबसे पहला नियम। जैसे यम है नियम है, तो नियम में शास्त्र बताता है सबसे पहला नियम स्नान का है। हम लोग अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि सवेरे उठते हैं तो पहला क्या काम करते हैं, स्नान करते हैं। स्नान करने में आनंद आना चाहिए व्यक्ति को, पशु जैसा तकलीफ का अनुभव नहीं करना चाहिए। जैसे गाय को बैल को स्नान कराया जाए तो बहुत दिक्कत का अनुभव करते हैं, पगहा में बहुत जोर से खींचना पड़ता है। हमने देखा है, हमने पशुओं को स्नान कराया है खिचड़ी के दिन, मकर संक्रांति के दिन, साल में एक बार, और फागुन में होली के दिन उनको स्नान कराया जाता है, बस दो बार, और दो बार भी वो स्नान नहीं करना चाहते। उन्हीं की सफाई के लिए सब किया जाता है तो भागते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी स्नान नहीं करना चाहते, तो बच्चे तो बच्चे हैं लेकिन कई लोग स्नान नहीं करते। शरीर को शुद्ध करने के लिए पहला काम है स्नान, और वह भी सवेरे होना चाहिए, यह नहीं कि 10 बजे 12 बजे उठे आंखें मिचते हुए बस कुछ नहाए धोए या केवल हाथ पैर धो दिए और चल दिए ऑफिस, क्यों दिखाते हैं बाहर कि हम साफ हैं, स्नान किए हैं। अरे यहाँ एक कहावत कहते हैं, कबीर दास का तो लिखा हुआ नहीं है लेकिन कहते हैं, ऊपर साफ भीतर मैल, कहे कबीरी का भाई। बोलते तो आजकल के लोग ऊपर से साफ दिखते हैं, बाकी गंदा रहते हैं, शरीर को धोते भी नहीं अच्छा से। पहला नियम बताया जा रहा है भगवान के भजन में भक्ति में, स्नात्वा स्नान करे, स्त्री के लिए बताया जा रहा है, या पुरुष करे तो भी कर सकता है, आगे ये बात बताई जाएगी। शुक्ल दत्ति और मुंह धोवे, शुक्ल दत्ति हो करके स्नान करे, ये अर्थ है। स्नान करके और ब्रशिंग करे ये बात नहीं है। शुक्ल दत्ति का अर्थ जिसका दांत उज्जवल हो, उजला हो, तो उजला तो दांत तभी रहेगा ना जब उसको ठीक से धोया जाएगा, और नहीं तो कृष्ण दत्ति हो जाएगा, कृष्ण दत्ति हो जाएगी। दत्त का अर्थ दांत, उज्जवल दांत रहना चाहिए, मतलब तो उसको धोना चाहिए अच्छा से। वसीता अलंकृतांग भरे, और अलंकार पहने, एक दो गहना अवश्य पहनना चाहिए सौभाग्यवती स्त्री को। जैसे कान का आभूषण है, अंगूठी है, गले में है, जरूर पहनना चाहिए। तो वसीत शुक्ले अंबरे, दो वस्त्र पहनने के लिए कहा गया है, एक तो नीचे वस्त्र पहनती है, एक ओढ़नी रखती है, तो दो वस्त्र है जो शुक्ल वर्ण का होना चाहिए, उज्जवल उजला कपड़ा पहनना चाहिए व्रत करने के लिए। बहुत प्रकार के तड़क भड़क और फैशन के कपड़ा पहनने का तो कोई प्रश्न ही नहीं, साड़ी पहनो भी सादा बिल्कुल व्रत करना। और पूजयत प्रात राशत प्राग भगवंतम श्रीयासन, सवेरे के ब्रेकफास्ट के पहले, प्रथम भोजन के पहले ही भगवान की पूजा श्री जी के साथ करें। श्रीयासन भगवान श्री कृष्ण की, विष्णु की पूजा अकेले करने का विधान नहीं है, श्रीयासन श्री के साथ पूजा करनी चाहिए, लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए। यह अर्थ भगवंतम पूजयेत, श्री भगवान की पूजा करे। वो पूजा की विधि बताई जाएगी कैसे की जाएगी, भगवान की पूजा करे श्रीया सह श्री के साथ। प्रधान पूजा तो नारायण की ही है, लेकिन उसके साथ माता लक्ष्मी जी भी होनी चाहिए। पूजा करते समय कुछ बोलना चाहिए, श्लोक बोलने के लिए कह रहे हैं, भगवान के गुण इस तरह से बोलना चाहिए, अलम ते निरपेक्षाय सर्व काम नमोस्तु ते महाविभूतिपतये नमः सकल सिद्धये। इस तरह से जो शास्त्रों में भगवान के गुण प्रकाशक वाक्य दिए गए हैं उसी को बोलना चाहिए, भगवान के गुण उसमें भरे रहते हैं। जैसे आचार्यों ने ऋषियों ने महामंत्र दिया, अपने से कोई मैन्युफैक्चर नहीं करना चाहिए, अपनी कविताएं अपना नियम और गाना जो पहले से आचार्यों ने सेट किया है वो परफेक्ट होता है, भगवान की महिमा उसमें उभरती है, इसलिए वही गाना चाहिए। तो यहाँ ये बात कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी की, इस तरह से बोले, अलम ते निरपेक्षा या सर्व पूर्ण काम नमोस्तुते, हे नाथ हे विष्णु आप पूर्ण काम हैं, आपको सब कुछ प्राप्त है, आपको कोई इच्छा नहीं है और इसलिए आप निरपेक्ष हैं। जिस व्यक्ति की इच्छाएं पूर्ण है उसको कुछ चाहिए नहीं तो निरपेक्ष होगा ही, भगवान निरपेक्ष हैं, पूर्ण हैं, उनको कोई कमी नहीं है, ये भगवान की विशेषता बताई जा रही है। ऐसे प्रभु की शरण लेनी चाहिए जो अपने आप में बिल्कुल पूर्ण है, किसी से कुछ चाहिए नहीं उसको, और जो सबकी इच्छाओं को पूरा कर सकता है, ये भगवान का गुण है। हम लोगों को बारंबार इन बातों पर विचार करना चाहिए, विष्णु के अतिरिक्त इस संसार में कोई भी देवता ऐसा नहीं है जो पूर्ण काम हो। और फिर मनुष्यों में यह बाबा वो बाबा तो बहुत फालतू बात है, देवता भी पूर्ण काम नहीं है, अधूरे हैं, केवल पूर्ण काम कृष्ण है, विष्णु उनका सब कुछ है, सब कुछ उन्हें प्राप्त है, वे दिव्य हैं, चिन्मय हैं और भक्तों के प्रति स्नेह से भरे रहते हैं, परंतु देवता आदि पूर्ण काम नहीं। हमने सुना है लोग किसी देवता की मनोवती करते हैं, कहते हैं कि हे अमुक देवता, मान लीजिए हे दुर्गा जी, हे हनुमान जी, यदि हमारा ये काम हो जाएगा तो मैं आपको एक शेर मिठाई खिला दूंगा, एक किलो मिठाई खिला दूंगा, शेर पहले कह दे। तो ऐसे लोग मनौती करते, इसका मतलब है कि हनुमान जी को अब एक शेर मिठाई दुर्लभ है, उसके लोग से इनका काम कर देंगे। फैक्ट चाहे जो कुछ भी हो, हनुमान जी को कोई कमी नहीं है, लेकिन जनता तो यही समझती है कि कुछ देंगे तब ये हमारा काम करेंगे, ऐसा सोचते हैं। चाहे दुर्गा जी के लिए भी और भी भगवान सूर्य के लिए, चाहे गणपति जी के लिए, सबके लिए बस यही कहते हैं, अगर ये काम कर देंगे तो आपको मिठाई खिलाएंगे। लगता है कि काम करने की उनको शक्ति है, लेकिन मिठाई बनाने वाले की उनकी कोई शक्ति नहीं है ना, इसीलिए ना तो वो भूखे रहते हैं कि डालडा का भी दो हम खाएंगे, यही कह रहे हैं। कोई पूर्ण काम नहीं है। अरे जब भगवान शिव, ब्रह्मा जी, इंद्र, चंद्र, सूर्य, ये अपूर्ण काम है, इनको कुछ चाहिए तो ये दूसरे की कामना क्या पूरी करेंगे, और फिर इनसे कोटि कोटि गुना नीचे इन देवताओं से इस पृथ्वी पर के, यह बाबा वह बाबा यह बीबी क्या पूरा करेंगे, क्या मनोरथ पूरा करेंगे। जब भ्रम होता है मनुष्यों का, मनुष्य को चाहिए को कृष्ण की आराधना करे, भगवान की आराधना करे, जो स्वयं अपने आप में पूर्ण है, और इसीलिए किसी के प्रति निरपेक्ष है। भगवान ये नहीं चाहते हमको कोई ला करके दे, ला करके दे, देता है उसका कल्याण होता है, उसकी शोभा बढ़ती है, न कि भगवान को जो जरूरत है। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि कोई व्यक्ति जब विष्णु को देता है, खास करके जब उनका गुण गाता है, तो उसी व्यक्ति की शोभा बढ़ती है। जैसे अगर दर्पण में प्रतिबिंबित मुख की शोभा बढ़ानी है, हम अपना मुख देख रहे हो और मुख पर श्रृंगार करना है दर्पण के अंदर, तो उसका उपाय क्या है? उसका उपाय है मूल मुख पर श्रृंगार करना। तो विष्णु मूल है, यदि विष्णु को कोई देता है तब वो सबको मिलता है, और नहीं अगर दूसरे को दे तो जैसे दर्पण में ही चिपक कर वस्तु रह जाएगी, उस व्यक्ति को नहीं मिलेगी। इसी तरह किसी को दिया हुआ द्रव्य या सम्मान या पूजा, वो उस व्यक्ति को भी नहीं मिलता है, दूसरे को कहां से मिलेगा। जरा दिमाग लगाकर समझना चाहिए हम किसकी भक्ति करना चाहते हैं, किसकी करनी चाहिए। वास्तव में विष्णु की भक्ति करनी चाहिए, सब तरह से पूर्ण है, निरपेक्ष है, अलम निरपेक्ष है, पूर्णतः निरपेक्ष है, पूर्णतः पूर्ण काम है, महाविभूति पतय। और संसार में, ब्रह्मांड में, वैकुंठ में जितनी भी संपत्तियां हैं, महाविभूति, सारा धन के वे मालिक, महाविभूति पतय। अरे भगवान के सामने कोई क्या है? ये सारा जगत भगवान ने बनाया है, इसमें जो सोना चांदी माणिक की मतलब डायमंड है, सब कुछ श्री कृष्ण का है, और यह प्राकृत जगत वैकुंठ के आगे कुछ भी नहीं है। यहां हम किसी चीज से उपमा नहीं दे सकते, जैसे यहां पर अगर बंबई शहर की उपमा दें और एक झोपड़ी केवल, तो उतना भी तुलना नहीं होगी। वैकुंठ में अपार वैभव है, अपार वैभव है। तो कुछ ऐसे धन हैं जिनको महाविभूति कहते हैं, इसलिए लक्ष्मी जी का भी एक नाम है महाविभूति, महती विभूति, महान धन सब तरह से। तो हे महाविभूति पति, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। सकल सिद्ध है, आप समस्त सिद्धियों के मूर्तिमान स्वरूप हैं, सफलता के मूर्तिमान स्वरूप हैं, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। नमः नमः दो बार आया है, इसलिए कई बार कहा जा सकता है। हे निरपेक्षाया नमोस्तुते, हे पूर्ण काम नमोस्तुते, महाविभूति पतये नमः, और सकल सिद्धये नमः। भगवान की भक्ति में नमस्कार एक बहुत बड़ा गुण है, और प्रभु का ऐसा स्वभाव है कि वे प्रणाम करने से ही बहुत मान लेते हैं। सकृत प्रणाम किए अपनाए, एक बार भी कोई व्यक्ति कृष्ण को प्रणाम करता है तो कृष्ण उसको अपना मान लेते हैं, और विचार करने लगते हैं कि इसका दुख दूर करना चाहिए, दुख दूर करना चाहिए, और जब सोचेंगे दुख दूर करना तो दुख कहाँ रह जाएगा। हमने देखा है सामान्य मनुष्यों में भी जो अच्छे लोग होते हैं, उनके सामने कोई झुक जाए प्रणाम करे तो चाहते हैं कि उस व्यक्ति का दुख मिटा दो, अपनी शक्ति होती है, ये हमारे सामने झुका हुआ है, ये है वो। तो फिर भगवान के सामने कोई प्रणाम करे झुक जाए तो क्यों नहीं उसका दुख मिटा देंगे। बारंबार प्रणाम करना चाहिए, इस व्रत की, ये व्रत की जान है भगवान का गुण गाना और प्रणाम करना। तो नाम जपामि नमामि हरे, भगवान शिव कहते हैं कि हे नाथ, भगवान श्री राम से कहते हैं, मैं तो केवल दो काम करता हूं, इसके अलावा मुझे कोई काम आता नहीं है। तव नाम जपामि नमामि हरि, हे हरि, हे श्री राम, मैं आपका नाम जप करता हूं और आपको प्रणाम करता हूं। भगवान शिव जैसा वैष्णव, जो सब वैष्णव में मुकुटमणि है, वे कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं आता है प्रभु, मैं तो आपका नाम उच्चारण करता रहता हूं और आपको प्रणाम करता हूं। यही दो भक्ति वास्तव में सर्वश्रेष्ठ है। श्रीमद भागवत के अंतिम श्लोक में कहा गया है नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख समनस्तम नमामि हरिं परम।
जिनका नाम संकीर्तन समस्त पापों को नष्ट कर देता है और जिनको किया गया प्रणाम समस्त दुखों को नष्ट कर देता है, ऐसे हरि को मैं प्रणाम कर रहा हूं। ये भागवत का लास्ट श्लोक है। तो नाम संकीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जीवन में जो भी, इस जीवन या पूर्व जीवन में जो भी पाप ताप हो गया है, गलती हो गई मनुष्य से, वो भगवान का नाम लेने से नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार से जैसे सूरज के उगने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, जितनी नाम में पाप काटने की शक्ति है एक नाम के उच्चारण में, उतना कोई करोड़ों जन्म में कोई पापी पाप कर ही नहीं सकता है। जैसे सूरज में जितना अंधकार नष्ट करने की शक्ति है, उतनी शक्ति क्या हम लोगों में अंधकार बनाने की है? सारे बंबई में अगर नोटिस दिया जाए कि अब सूरज उगने वाला है और सब लोग अपने झोला में, सूटकेस में, अलमारी में अंधकार बचाइए, अंधकार पर खतरा आ गया है, या इस नगर में अंधकार बचाइए जिससे बिजली की शोभा बनी रहे, लेकिन सूरज के उगने पर कोई अंधकार बचा ही नहीं सकता। क्या है सरकार ने ताकत के अंधकार बचा ले लो सड़क पर और सब? सूरज के उगते ही अंधकार दूर होगा। जिस सौभाग्यवान व्यक्ति के जिह्वा पर भगवान का नाम है, उसमें पापों का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। केवल पूर्व के ही नहीं, आगे भी पाप जो होंगे नष्ट हो जाते।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
यही है जीव का सौभाग्य, भगवान का नाम लेना और भगवान को बारंबार प्रणाम करना। इसी से शुद्धि होती है, इसी से सारी कामनाएं पूर्ण होती है। भगवान को प्रणाम करना और दूसरे को प्रणाम करने में बहुत अंतर है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि सकल इंद्र में या देह के बास यह सिखावन गई हो, रुकी हो नयन विलोकत और शीश ईस ही नहीं। अब मैं इंद्रियों को यह शिक्षा दूंगा, केवल कृष्ण को देखो, अपने नेत्रों को रोकूंगा दूसरे को देखने में और मस्तक झुकाऊंगा केवल राम के सामने, ईश्वर के सामने मस्तक झुकाऊंगा, और जगह नहीं झुकाऊंगा। ईश्वर के नाते से ही भक्तों को झुकाया जाता है, नहीं तो भक्तों में क्या है? कुछ नहीं है, वो तो कृष्ण से जुड़े हुए हैं इसलिए नमस्ते हैं। अगर भक्त नहीं है तो नमस्कार करने लायक है ही नहीं। तो इस प्रकार से यहां नमस्कार की बात सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। कुछ स्त्री को चाहिए, पत्नी को, वो तो भगवान को बारम्बार नमस्कार करके इस तरह गुण गावे,
जथा त्वं कृपया भूत्या तेजसा महिनौजसा जुष्ट ईश गुणै सर्वैस्ततोसि भगवान प्रभु।
हे प्रभु, आप कृपा से, धन से, तेज से, महिमा से और वीरता से, वीर्य से जुष्ट जुक्त हैं, अर्थात भगवान में सारे भग हैं, ऐश्वर्य हैं, सारे गुणों से भगवान पूर्ण है। ईश गुण सर्वई जुष्ट, आप सभी गुणों से जुष्ट हैं, जुक्त हैं, इसीलिए लोग आपको भगवान कहते हैं। ततोसी भगवान प्रभु सर्वसमर्थ, ऐसे ही बस किसी को भगवान कह देना, ये बात कह देना, आजकल ऐसा है जैसे किसी कुत्ते को भी कह देना कि हाथी जा रहा है, क्योंकि हाथी का मतलब वो जानता नहीं है व्यक्ति। हाथी का मतलब इतना ही जाना है कि उसके चार पैर होते हैं, एक पूंछ होती है, पर साइज वगैरह अभी तो जानना चाहिए ना, कि चार पैर होगा, एक पूंछ होगा, तो बस हाथी हो जाएगा। जहां था ये भगवान का अवतार, ये भगवान का अवतार, ये भगवान, ये कुत्ता अवतार, इस तरह से। यहां पर हम लोग ऐसी गलती नहीं कर सकते, किसी कुत्ता को हाथी नहीं कह सकते हैं, किसी बैल को हाथी नहीं कह सकते, किसी गधा को हाथी नहीं कह सकते, पर गधा से भी गधा को भगवान तुरंत कह ले। ये भगवान है, ये भगवान है, ये आशीर्वाद दे देगा, ये करे, क्या आशीर्वाद दे, कुछ नहीं कर सकते। विष्णु का आशीर्वाद चाहिए, भगवान का आशीर्वाद चाहिए, वो आशीर्वाद देते हैं। तो भगवान कृपा से परिपूर्ण है। देखिए यहाँ पर तृतीया में लगाकर जुष्ट कहा जा रहा है, कृपया जुष्ट, भूत्या जुष्ट, तेजसा जुष्ट, महिना जुष्ट, ओजसा जुष्ट, सर्वय गुणैश्च जुष्ट, इस तरह के भगवान हैं, कृपा से भरे पड़े हैं, कृपा के समुद्र हैं। और जीवों में और देवताओं में कृपा होती है, बहुत थोड़ी होती है, वो सब समय कृपालु नहीं रह सकते हैं, सब समय दया नहीं करते। अब देखते ही संसार में अपने परिवार के प्रति आदमी की थोड़ी सी दया है, दूसरे के परिवार का कोई केयर नहीं, चाहे दुख में हो चाहे सुख में हो, कुछ भी केयर नहीं, क्या कृपा है। देवताओं में भी यही बात, कृपा के समुद्र तो भगवान है, सुहृदम सर्वभूतानां, अनादिकाल से सभी जीवों को पोष रहे हैं, सूरज का प्रकाश दे रहे हैं, हवा दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, फसल दे रहे हैं, और भीतर परमात्मा रूप से ज्ञान दे रहे हैं, उठने का, काम करने का, स्मरण करने का सब दे रहे हैं, और भगवान के इस स्नेह सप्लाई में कोई कमी नहीं हो रही, कोई कमी नहीं हो रही है, सबको दे रहे हैं। हवा बना करके भगवान ने क्या किसी को रोका कि तुम सांस मत लेना क्योंकि तुम मेरे भक्त नहीं, ऐसा नहीं कहो। लेकिन और जगह तो ये हमारा स्टाफ है, ये हमारा फैमिली है, ये हमारा, ये है हमारा, और बाकी लोग, बाकी तो तुम्हारे नहीं है ना, ये है कृपा। इन भगवान की अक्षय कृपा, अनंत कृपा है। इसीलिए सबसे पहले उस स्त्री को ये प्रणाम करते हुए कहना चाहिए कि हे प्रभु, आप कृपया जुष्ट, आप कृपा से युक्त है, कृपा मय है, और भूति अनंत वैभव ऐश्वर्य से आप जुष्ट है, अद्भुत ऐश्वर्य है भगवान को, तेजसा तेज से जुष्ट है, किसी को भी हरा देना, किसी को भी अभिभूत कर देना अपने प्रभाव के सामने, इसको तेज कहा जाता है, तेजस्वी कहते हैं, भगवान में तेज है। ऐसा लिखा गया है कि भगवान श्रीराम जब जनकपुर गए तो उनके तेज को देख करके वहां के जुटे हुए ब्रह्मर्षि और राजागण वैसे हो गए जैसे सूरज के उगने पर छोटे छोटे दीपक मलिन हो जाते हैं, दिन में दीपक की कोई कीमत नहीं रह जाती, भगवान के तेज के सामने सब फीके पड़े। इतना तेज है भगवान में, सब प्रकार का तेज है उनमें, वक्तृत्व कला है उसमें, युद्ध की कला है, प्रभाव है, शारीरिक सौंदर्य है, प्रभुता है, सब कुछ है तेज। ऐसे प्रभु का भजन करना चाहिए, उनकी लीलाओं में उनके तेज को बार बार बताया गया है। भगवान नृसिंह देव के सामने हिरण्यकश्यपु की तुलना कर रहे सुखदेव गोस्वामी, वो भगवान पैतरा बदल रहे थे, पकड़ना चाहते थे, तो वो समझता था कि डर रहा, एक बार पकड़ भी लिए तो छूट गया, भगवान ने ढीला कर दिया होगा, छूट गया, तो सोचता है वो ये तो बहुत कमजोर है विष्णु। लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जैसे फतिंगा प्रचंड आग की ओर झपटे, उस तरह से इस असुर ने नृसिंह देव पर झपटा, तो भगवान को प्रचंड धधकती हुई आग कह रहे हैं और हिरण्यकश्यपु को एक फतिंगा बना रहे, उसमें पड़ेगा तो फन से जलकर खत्म हो जाएगा। ये भगवान का तेज, तुरंत पकड़ लिया, पकड़ करके चीर कर फेंक दिया, भगवान का तेज। तेज सा महीना, महीना का अर्थ महत्व, महिमा, सौंदर्य आदि सब प्रकार का गुण, इसको महिमा कहते हैं। और ओजसा का अर्थ वीर, अद्भुत कार्य करने की क्षमता, तीन पग में पूरा पृथ्वी नाप लेना, पूरा ब्रह्मांड नाप लेना, यह अद्भुत बात है। तीन पग भी नहीं लगा भगवान को, एक पग से पाताल तक नाप लिए और दूसरे से सत्यलोक तक, तीसरे के लिए बलि को गाली देने लगे, डांटने लगे, जी इतना धन नहीं था तो तीन पग देने की शपथ क्यों लिया, दो ही पग में तो खत्म हो गए, तीसरा कहाँ है, बोलो बोलो, झूठ है कहीं के दानी बने हो। भगवान अपने भक्त से इस तरह से परिहास कर रहे हैं, दानी बने हो, जब नहीं था धन तो क्यों मुझ ब्राह्मण को तुमने कहा देने के लिए। तो बलि महाराज वहां कहते हैं कि हे नाथ, मेरी बात झूठी नहीं है, मैं पूरा कर दिया हूं, क्योंकि मेरे पास जो कुछ था मैंने दे दिया, तो जो था वो दे दिया, तो आप हमको झूठा क्यों बना रहे हैं। लेकिन यदि आप ये मानते हैं कि तीसरे पग के लिए जमीन नहीं दिया, तो इदम शरीरम कौनते क्षेत्रम इत्यादि दिए थे। आपने ही गीता में कहा है कि यह शरीर भी क्षेत्र है, यह भी एक खेत है, जमीन है, तो ये बाकी रह गया है तीसरा कदम, आप इस पर डाल दीजिए, इसको ले लीजिए। मतलब मेरा आपने ले लिया, मैं को भी ले लीजिए, मुझे अपना सेवक बना लीजिए। तो भगवान उसी पोज में बोले, ठीक है आओ इधर आओ। वो तो हाथ जोड़े थे ही, हाथ जोड़े थे भगवान का, इधर आओ। बलि महाराज बैठे और उनके सिर पर भगवान ने अपना दुर्लभ चरण कमल रखा। ठीक है, ऐसे मेरे दास है, बिना वेतन के दास, एक पैसा भी नहीं दूंगा। लेकिन उसी समय उसी कन्वर्सेशन में भगवान बलि महाराज के दास हो गए, द्वारपाल हो गए। वो कहते हैं महाराज मैं आपके पास रहूंगा, आपके शत्रुओं को पराभूत करूंगा और आप मेरा सदा दर्शन करते रहे। तो अब बलि दास हुए कि विष्णु दास हुए बताइए। तो शीतल लोक में गए, वास्तव में भगवान सेवक बन गए। ये है भगवान की विशेषता, ये इनका वीर्य है। स्वर सहज स्वभाव है भगवान का, भक्तों के वश में है और अद्भुत कार्य करते हैं, पृथ्वी को अपने दांतों पर उठा लाए। ये है वीर्य प्रभाव, वीरता स्वरूप भक्तों के वश में। इस प्रकार के भक्त वश्यता और किसी में नहीं देखी जाती। और जुष्ट ईश हे ईश्वर, हे सुप्रीम कंट्रोलर, हे परम नियंता, आप सर्वई गुणई जुष्ट, सभी गुणों से युक्त। कोई भी ऐसा गुण नहीं है जिससे भगवान पूरा पूरा न युक्त। सर्वई गुण, जैसे क्षमा, कल मैं वर्णन कर रहा था भृगु जी के द्वारा क्षमा गुण का, किस तरह से भृगु के लात को भगवान ने सहा। आजकल तो एक आदमी हो तो अगर कोई आकर लात से मारे तो टांग पकड़ कर उठा कर फेंक देगा, है ना? देखते हो इसको तमीज नहीं है, हमारे छाती पर लात मार रहा है, लेकिन भगवान तुरंत पैर सहलाने लगे, चरण सहलाने। ये क्षमा गुण, किसी अपराधी से अपराधी व्यक्ति का दोष नहीं देखते, और फिर अपने भक्तों का दोष देखना तो उनके भाग्य में लिखा ही नहीं। भगवान श्री राम कभी दोष नहीं देखते हैं अपने भक्तों का, ये स्वभाव है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जहियघ बधे व्याध जिमी बाली, फिर सुकंठ सोई किन्न कुचाली, सोई करतूति विभीषण केरी, सपने उसो न राम ये हेरी। जिस पाप के चलते भगवान ने बाली का वध किया, वही पाप फिर सुग्रीव किए, सुकंठ मन सुग्रीव, फिर सुकंठ सोई किन्न कुचाली। तारा सुग्रीव की पत्नी के साथ व्यभिचार करने के कारण भगवान श्री राम ने बाली का वध कर दिया, और जब सुग्रीव राजा हुए तो वे उसकी पत्नी को अपनी पत्नी के रूप में रख लिए, तारा को। जहियघ बधे व्याध जिमी बाली, फिर सुकंठ सोई किन्न कुचाली, और सोई करतूति विभीषण केरी। दूसरे की स्त्रियों के साथ बलात्कार करने के कारण भगवान श्री राम ने रावण का वध कर दिया, और विभीषण फिर वही कार्य किए, रावण की पत्नी मंदोदरी को रख लिए। यह बात और है कि ये लोग वास्तव में शुद्ध ही रही थी, वो पीछे भीतर का रहस्य है, लेकिन लोक दृष्टि से कहा जाए तो ये भी वैसी ही गलती है। लेकिन सपने उसो न राम ये हेरी, भगवान ने सपने में भी नहीं देखा है, अपने आश्रित के दोष को नहीं देखा जाता है। ये धर्म है, स्वभाव है भगवान का। ऐसा नहीं कि आज कुछ दोष देखे तो कहा ठीक है, गुण देखे तो बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, और कुछ दोष देखे तो दूर हो जाओ, अच्छी मानस अच्छी मानस। ये तो थर्ड क्लास के आदमी का काम है वास्तव। जब आश्रय दिया, छाया दिया, तो जीवन भर देना चाहिए, ये महत्ता है। तो ये सब गुण भगवान में है, जो व्यक्ति भगवान का भजन करता है तो उसमें ये सब गुण आते हैं, धीरे धीरे आते हैं आते हैं। निसंगता का गुण, दया का गुण, किसी के दुख को दूर करना, दान देना, और किसी की दुख किसी की विपत्ति को दूर कर देना, भगवान का सहज स्वभाव है। सर्वै गुणै, सुंदरता आदि से भरपूर है, स्नेह से भरपूर है। हे नाथ, आप सभी गुणों से युक्त हैं। ये सब श्लोक पढ़ पढ़ करके भगवान को प्रणाम करना चाहिए। तो आप इन सब गुणों से युक्त हैं, इसलिए आपको लोग भगवान कहते। देखिए भगवान शब्द का डिफिनेशन, ऐसे किसी के नाम में भगवान जोड़ देना आजकल का तो फैशन हो गया है। प्रेस है, कंप्यूटर है, किसी के आगे भगवान लिख दो। ये अद्भुत बात, इस संसार में कोई हाई पद पर है, मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर है, राष्ट्रपति है, गवर्नर है, राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, लेकिन और किसी को ऐसे तैसे नहीं लिख देंगे कि ये भारत का प्राइम मिनिस्टर है। लिखने की हिम्मत है? नहीं लिख सकते। मजिस्ट्रेट तक नहीं लिख सकते, लेकिन भगवान लिख दो किसी के लिए स्वतंत्रता। इसका मतलब भगवान सबसे गिरे हुए कमजोर व्यक्ति है ना। और वो तो जमराज जी बाद में बताएंगे कि तुम्हारे नाम में भगवान लिखा गया था ना, दुष्ट कहीं, अब हमारे दूत तुम्हारे भगवत्ता निकाल लेंगे पीट पीट कर। ये भगवान बनता था। और जमराज तो छोड़ देगी, यहीं पर बुढ़ापा में हॉस्पिटलाइज्ड हो जाएगा भगवान, तब उसकी दुर्दशा चालू होगी, सारा शरीर काम नहीं करता। एक भगवान एक बार अस्पताल में गए थे, प्रभुपाद जी लिखे और अस्पताल में जाकर भगवान बोले भक्त से, डॉक्टर से, डॉक्टर साहब दांत के दर्द से परेशान हूं। वाह रे भगवान, आंत के रोग से परेशान है, शौच नहीं उतर रहा है, कब जाए भगवान, मर जाएंगे। इस तरह से भगवान बनते। अरे कुछ समझना चाहिए, मानव समाज में शिक्षा की इतनी कमी है, कम से कम ईश्वर कौन है, भगवान कौन है, वो तो जानना चाहिए ना। किसी को कह दो भगवान और कैसे मान लेंगे। यहां भगवान की परिभाषा दिख जा रही है कि हे नाथ, आप कृपा से, संपत्ति से, तेज से, महिमा से, ओज से और सर्वै गुणै जुष्ट ततोसी भगवान, इस कारण से आपको लोग भगवान कर, इस कारण से भगवान और सर्वसमर्थ। इतना कह करके उस पत्नी को चाहिए कि भगवान की पत्नी अर्धांगिनी श्री लक्ष्मी जी को प्रणाम करे। विष्णु पत्नी महामाये महापुरुष लक्षणे प्रिये था मे महाभागे लोक मातर नमोस्तुते। हे भगवान की अर्धांगिनी, हे महामाया स्वरूप और हे भगवान के समस्त लक्षणों से युक्त, भगवान में जो गुण है आप में भी वो है, तो हे माँ, हे जगत की माता, हे जगत जननी, हे महान भाग्यवती, आप हम पर प्रसन्न होइए। लक्ष्मी जी से मांगना चाहिए, राधा रानी से। राधा गिरधारी के सामने केवल गिरधारी जी से ही नहीं मांगना चाहिए, राधा रानी से ही मांगना चाहिए। जो चाहिए मांगिए, संकोच मत कीजिए, वो बुरा नहीं मानते। अगर शुद्ध प्रेम मांगना है तो मांगिए, और नहीं कोई वस्तु चाहिए तो वो भी मांगना चाहिए। विष्णु पत्नी, ये लक्ष्मी जी की पहली विशेषता है, वो भगवान की अर्धांगिनी पत्नी, जहां भगवान रहते हैं वहीं रह। महा माये, महान शक्ति है, माया का अर्थ शक्ति, महाशक्ति, अद्भुत है, इस विश्व को उत्पन्न करने की और इस विश्व को चलाने की, पालन पोषण करने की, उद्भव स्थिति प्रलय कारिणी। और ब्रह्म संहिता में भी एक श्लोक है ना, छाये वजस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा, स्थिति प्रलय साधन शक्ति लेकर। भगवान स्थिति प्रलय करते, पालन करते हैं, प्रलय करते हैं, जन्म देते हैं इस शक्ति के द्वारा। इसीलिए श्री लक्ष्मी जी को कहा गया महामाया, हे महामाया। और महापुरुष लक्ष्मण, महापुरुष का अर्थ है श्री भगवान नारायण। तो भगवान नारायण में जो जो गुण हैं वो श्री लक्ष्मी, श्री जी में भी हैं। श्री लक्ष्मी कहने से ये दोबारा हो जाता, श्री का अर्थ ही है लक्ष्मी, तो श्री लक्ष्मी नहीं कहेंगे, श्री जी अथवा लक्ष्मी जी। जो भगवान में गुण है वही लक्ष्मी जी में है। भगवान की नित्य संगनी है, भगवान की शक्ति है, भगवान ही लक्ष्मी जी के रूप में है। तो इसलिए भगवान में जो गुण है लक्ष्मी जी में भी है। जैसे ऊपर का गुण बताया गया, पूर्ण काम, निरपेक्ष या तेज, बल, ओज, कृपा आदि सभी गुण लक्ष्मी जी में है। ये तो बहुत बिफिटिंग पत्नी है भगवान की। अरे भगवान की पत्नी वही होगी ना जो भगवती होगी, भगवान होगी खुद, है कि नहीं? और यदि वास्तव में पति भगवान का भक्त हो इस संसार में, पति यदि कृष्ण से प्रेम करता है तो पत्नी में वो गुण आ ही जाता है, देर सवेर वो आता है। यदि पतिव्रता पत्नी है तो पति का गुण उसमें आता है। इसीलिए पतियों को चाहिए कि सबसे पहले विष्णु का भक्त बने। सारे गुण आ जाएंगे, वो भक्त बनेंगे तो विष्णु का गुण आएगा। और पत्नी यदि केवल सेवा करे, भजन न भी करे, तो पति का सारा गुण उसमें आ जाएगा। इस तरह से जैसे बिजली आती है तार के द्वारा, वैसे भगवान के सारे गुण भक्त की परंपरा से आ जाते हैं। यहां लक्ष्मी जी को कहा गया कि आप भगवान नारायण के सभी लक्षणों से युक्त हैं, महापुरुष लक्षण है। प्रिय था हे महाभाग्यवती, नारायण की बक्षो विलासिनी होने के कारण आप महाभाग्यवती हैं, महान भाग्यवती हैं। लोक माता, हे दुनिया की माँ, हे सबकी माँ, ब्रह्मा शिव आदि सबकी माँ, हम आपको प्रणाम करते हैं, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आप मुझ पर प्रसन्न होइए, प्रसन्न हुई, प्रिय था, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, मुझ पर खुश हो जाइए। इस तरह से कहना चाहिए, वाणी द्वारा ये भजन है। विष्णु पत्नी महामाये महापुरुष लक्षणे, प्रिय था मे महाभागे लोक मातर नमोस्तुते। लोक माता का अर्थ है लोगों की माता, संबोधन है। हे लोक माता, हे जगत जननी, हे जगन माता, आप मुझ पर प्रसन्न होइए, मुझ पर कृपा कीजिए। अब बता रहे हैं कि किस तरह से भगवान की पूजा करनी चाहिए, क्या बोलते हुए। ओम नमो भगवते महापुरुषाय महानुभावाय महाविभूतिपतये सह महाविभूतिभिर् बलिमुपहराणी इति। जब भगवान को कुछ अर्पण करना हो तो ये मंत्र बोलना चाहिए। ओम नमो भगवते, हे विष्णु, आप छह ऐश्वर्यों से परिपूर्ण हैं। हे महापुरुष, हे पुरुषोत्तम, महानुभाव, आपकी अद्भुत अनंत लीलाएं हैं। महाविभूतिपते, समस्त संपत्ति के आप स्वामी हैं और महाविभूतियों से युक्त हैं, लक्ष्मी आदि से युक्त हैं। मैं आपको यह वस्तु दे रहा हूं, चाहे फूल दे, चाहे नैवेद्य दे, चाहे अगरबत्ती दिखा रहे, आगे आ रहा है वर्ण। वो कहे कि मैं आपको यह अर्पित कर रहा हूं, अनेन अह रह मंत्रेण, अनेन मंत्रेण, इस मंत्र के द्वारा। ओम नमो भगवते महापुरुषाय महानुभावाय महाविभूतिपते सह महाविभूतिभिर् बलिम उपहराणी, ये कहते हुए अर्पित करें। ये बोलने में क्या है और क्या याद करने में समय लगेगा बताइए? और कुछ भी याद नहीं है तो महामंत्र से अर्पित करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान को खिलाने का मंत्र अगर न मालूम हो तो महामंत्र उच्चारण करने से भगवान खा लेते हैं, वो काफी है। इसमें भी भगवान का नाम ही है। अनेन मंत्रेण, इस मंत्र से, अह अह प्रतिदिन, दिन दिन, अह का अर्थ दिन दिन, प्रतिदिन विष्णु, विष्णु का आवाहन, अर्घ्य, पाद उपस्पर्शन मतलब आचमन, स्नान, वास कपड़ा, वस्त्र, उपवीत, जनेऊ, विभूषण, गहना, गंध, पुष्प, धूप, दीपोपहारा आदि उपचारांश च समाहित उपहार है। भगवान को ये चीज अर्पण करना चाहिए। तो ये मंत्र पढ़ते हुए भगवान विष्णु को ये सब चीज अर्पित करनी चाहिए। क्या क्या? पहले आवाहन, पूजा के लिए जो मूर्ति रखी हुई है तो उसमें पहले भगवान को बुलाना चाहिए। बुलाने में भी यही मंत्र बोल सकते हैं कि हे भगवान आइए, आप हमारे पूजा लीजिए, इसको आवाहन कहते हैं, आप आइए। पहली पूजा है आवाहन, पहले मूर्ति में भगवान को बुलाना चाहिए। ऐसे तो मूर्ति ही भगवान है, उसमें क्या बुलाना है, लेकिन फिर भी जैसे किसी की पूजा करते हैं, किसी का सम्मान करते हैं, तो उसको बुलाते हैं ना, आइए यहाँ बैठिए, यह आसन है। आसन जो बैठते हैं आसन पर, तो इसके बाद तब नैवेद्यम, तब इसके बाद वो सब्जी रोटी भात जो भी नैवेद्यम आ रहा है, तो फिर कुछ कहते हैं कि खाइए, कहते हैं ना। सामान्य व्यक्ति को भी हम बुलाते हैं, तो भगवान को भी बुलाना चाहिए कि हे लाला, हे गोपाल जी, आइए खा लीजिए, खा लीजिए, खा लीजिए। इस मंत्र द्वारा बुलाना चाहिए, महामंत्र द्वारा, भगवान के नाम द्वारा। मैं न्यूयॉर्क में एक माता जी को देखा, 82 वर्ष की माता जी हैं। मैं जाता हूँ तो हर एक साल उनके यहाँ जाता हूँ, मानती नहीं, बुला लेती। तो वहाँ पर वो रखी हैं कई देवताओं का और भगवान का, श्रीनाथ जी का, सबका फोटो रखी। तो सीधा गुजराती में बोल रही थी, जेमो रे ऐसे कह कह करके, खाओ रे। तो उसमें श्रीनाथ जी को भी कहते, श्रीनाथ जी जेमो जेमो खाओ 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 खाओ, ऐसे ही सीधा बोलते थे, खाओ 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 श्रीनाथ जी का। और फिर स्कान का राधा गोविंद जी का फोटो रखे, वहां पर राधा गोविंद जी रहते, तो उनको कहती है कृष्णा कृष्णा खाओ 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 खाओ, राधा रानी खाओ खाओ। हम सुन रहे थे, और फिर कहती हैं स्वामी नारायण जी थे, स्वामी नारायण खाओ 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 खाओ, जलाराम बापा खाओ 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 खाओ, सब करे तो खाओ, हनुमान जी खाओ खाओ खाओ। तो हमको तो बहुत प्रसन्नता हुई ये देखकर, इतना मंत्र बोल रहे, बैठी थी और देर कर रही थी, घंटी बजा रही थी, खाओ रे खाओ जेमो रे जेमो ये जेमो। तो मैंने कहा माता जी सबको एक में ही बैठा दिए हैं, तो माता जी चकित हो गई, सबको खिला रही है तो सबको एक में बैठा दी, और इसमें भी पहले किसको खिलाएंगे, बाद में किसको खिलाएंगे, कोई क्रम रखना चाहिए ना। तो कहते महाराज जी हमको मालूम नहीं है क्या क्रम रखे। तो मैं कहा सबसे पहले भगवान गोविंद को, कृष्ण को, श्रीनाथ जी को खिला लीजिए, और इसके बाद किसी को भी खिलाते रहिए। अवस्था में वो भूल कर रही थी, सबसे पहले स्वामी नारायण जी को खिला रहे थे। तो मैंने कहा स्वामी जी ये माता जी आप उल्टा कर रही है ना, स्वामी नारायण जी तो भगवान कृष्ण के भक्त थे, राधा कृष्ण के भक्त थे, तो पहले कृष्ण को खिला लीजिए, इसके बाद जिसको परोसना हो उसी थाली में, चाहे अलग कहीं भी डालिए, सब लोग खा लेंगे। लेकिन जो कुछ भी हो, माता जी का भाव बहुत सुंदर था कि खाओ रे जेमो रे जेमो जेमो। आप विश्वास नहीं करेंगे, पक्का 20 मिनट बोलती रही खाओ रे। और लगता था कि भगवान खा रहे हैं, वो झूठा कभी हिसाब नहीं करते होंगे, माँ का भाव देखकर वो खा रहे हैं। तो इस तरह से पहले भगवान को बुलाना चाहिए, बुलाने के बाद अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य का अर्थ होता है पहले आते ही कुछ मधु और दूध कुछ दिया जाता है, ऐसे दही, दही में मधु मिला करके दिया जाता है, खाने के लिए दिया जाता है। अच्छा, तो आदमी कुल्ला वगैरह तो अपने आप कर ही लेगा। इसके बाद पाद्य, पाद्य का अर्थ है पैर धोने के लिए जल या और भी चीज, पाद्य। उपस्पर्शन, आचमन कराना, जल उपस्पर्शन का अर्थ होता है आचमन, तो भगवान का आचमन कराना चाहिए। फिर स्नान, और स्नान के बाद वास, वास का अर्थ वस्त्र कापड़, और इसके बाद उपवीत जनेऊ भगवान को अर्पित करनी चाहिए, और विभूषण विविध प्रकार के भूषण, गहना अलंकार, और गंध, गंध में जैसे चंदन है, अगरबत्ती है, अगरबत्ती को तो धूप कहते हैं, गंध जैसे चंदन आदि का लेप करना, पुष्प, पुष्प अर्पित करना, माला अर्पित करना, धूप, अगरबत्ती, दीप, दीप जो प्रसिद्ध आरती करते हैं, दीपक, उपहारांश जो उपहार, उपहार का अर्थ नैवेद्य, और अंत में भगवान को भोजन देना चाहिए। इस प्रकार के उपचारण समाहित उपहार है, एकाग्र चित्त से एकदम कंप्लीट मन को बस में करके आनंद के साथ भगवान को यह अर्पित करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को यह करना चाहिए। घर में ठाकुर जी हैं ही, राधा कृष्ण हैं, तो इस तरह से प्रेम से भगवान को बुलाना, खिलाना, इसके बाद ये देना, इसके बाद ये देना, इसके बाद ये देना, इसके बाद ये देना। अगर इस क्रिया में मान लीजिए किसी का आधा घंटा एक घंटा लगता है, तो जीवन का सबसे अच्छा समय है जो भगवान को सेटिस्फाई करने में जा रहा है। नहीं तो अपने को धोने, पोछने, खाने में तो आदमी लगाया ही है। अपना शरीर धोना, अपना मुंह धोना, अपना सजाना, ये आयरन करना, कुकिंग करना, खाया जाना बिना भोग लगाए, ये देह का पालन कर रहा है। अभ्यास होना चाहिए भगवान की सेवा का। तो समाहित चित्त से, चित्त में आनंद का अनुभव करते हुए भगवान की पूजा करनी चाहिए। कोई यह कहे कि पुंसवन व्रत के मंत्र क्या हमें बोलना जरूरी है? नहीं जरूरी है। देश काल के अनुसार महामंत्र बोलना ही इस समय जरूरी, पर निष्ठापूर्वक होनी चाहिए, नियम बना करके होना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जप करना है तो पूर्ण तत्परता के साथ करें, बैठ करके करे भगवान के सामने, तो उसका आनंद कुछ और ही होता है। अब कह रहे हैं कि हवि शेषम तु जुहियाद अनले द्वादशाहुति, ओम नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूतिपतये स्वाहा। यह मंत्र कह करके आहुति दे, अग्नि में आहुति दे। किसका? भगवान के लिए जो हवि बनाया गया था, प्रसाद बनाया गया था, उसमें से भोग लगने से कुछ बचा है तो उसको अग्नि में आहुति दे, क्योंकि अग्नि के मुख से भी भगवान खाते हैं। हवि शेषम का है अर्थ है नैवेद्य शेष। भगवान को प्रसाद भोग लगाते हैं तो कुछ बच जाता है भोग लगाने से, भोग लगा रहे कुछ बचा हुआ है, तो बचे हुए नैवेद्य को अग्नि में हवन करना चाहिए द्वादश बारह बार, और इस मंत्र का जप करना चाहिए बोलते समय। ओम नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूतिपतये स्वाहा। तो इसका अर्थ पहले किया जा चुका है, बारंबार अर्थ करने की आवश्यकता नहीं। श्रियं विष्णुं च वरदौ आशिषां प्रभवाउभौ भक्त्या संपूजयेत् नित्यं यदिच्छेत् सर्वसंपदा। अब श्रील सुखदेव गोस्वामी अपना वाक्य बोल रहे हैं स्वतंत्र, कहते हैं कि यदि इच्छेत सर्व संपदा, किसी व्यक्ति को सारी संपत्तियों की इच्छा है, बहुत बड़ा धन चाहता है, तो उसे चाहिए कि श्रीयम विष्णु च भक्त्या संपूजे, श्री जी की और भगवान विष्णु की पूजा करे भक्ति के साथ, यदि धन चाहिए तो। और नहीं ऐसे ही कंगाल रहना चाहता है तब तो अपना फैक्ट्री दुकान देखे भगवान से, सो क्या मतलब। बहुत मेहनत पड़ती है और सब कार्यों में, और जीवन भर कोई धन नहीं मिल पाता। भगवान की शरणागति से धन मिलता है। ध्रुव महाराज मधुबन में कोई कारखाना खोलने नहीं गए, वहां जा करके नारद जी की कृपा से वो जप कर रहे थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यही जप करते। यह जप करने से संसार में सबसे बड़े धनी वही है ध्रुव महाराज। यह पृथ्वी अगर बेच दी जाए पूरा पूरा, तो ध्रुव लोक का एक घर भी नहीं खरीदा जा सकता है। सत्य में बोल रहा हूं, वो चिन्मय है, वह दिव्य लोक है, उसकी कोई तुलना ही नहीं है। बताते हैं कि एक बार बादशाह अकबर जी गए थे वृंदावन में, वैसी घटना घटी थी कि तानसेन उनके दरबार के एक निधि थे नवरत्न। तानसेन बहुत सुंदर गीत गाते थे, संगीत सम्राट। तो अकबर बहुत प्रसन्न हुए उनके गान कला से। अकबर एक बार पूछे कि तानसेन क्या कोई संसार में ऐसा है जो तुम्हारे जैसा गा सकता है? तो तानसेन जी ने कहा कि हमारे जैसा हमसे कोटि कोटि गुना अच्छा गाने वाले एक संत वृंदावन में है। उनकी इच्छा हो गई बादशाह की कि चलो 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 सुनाओ तेरा गीत, उनका दर्शन करे, वो गए वृंदावन। ये सत्य घटना, निधिवन में गए तो वहां जाकर के स्वामी हरिदास से मिले तानसेन। तानसेन जी ने कहा कि सबको दर्शन नहीं देते हैं, आप इधर झाड़ी में छिपे रहिए कुंज में। ये गए, बहुत दिन के बाद भेंट हुई थी, उन्होंने प्रणाम किया तो स्वामी हरिदास जी ने पूछा कैसे हो क्या हो। तो इनको तो गीत गवाना था और अकबर को सुनना था छिप करके, तो कैसे गीत गवावे। तानसेन जी ने कहा कि गुरु जी आपने जो हमको एक राग सिखाया था उसको जरा फिर से बता दीजिए, मैं भूल रहा हूं। मलार राग था जिसको गाने से पानी बरसने लगता है, झड़ी लग जाती है बरसात की। तो उन्होंने स्वामी हरिदास ने कहा तो गाओ, तुमको क्या गाने में कमी आ रही है, जरा गाओ। तो तानसेन जी जान मुझ करके बिगाड़ दिए, उनको तो गवाना था उनके द्वारा। तो उन्होंने कहा ठीक है तानपुरा दो। तो स्वामी हरिदास जी तानपुरा लिए, ललिता जी के अवतार। ललिता जी गान कला में बहुत प्रवीण है, तो लिए और उस राग को गाने लगे। गाने पर तुरंत रिमझिम वर्षा चालू हो गई, बादल आ गए और ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। इतना समा बंधा, इतना आनंद हुआ, इतना आनंद हुआ कि अकबर आनंद में मूर्छित होकर के गिर गए थे उस आनंद के कारण। दुख की मूर्छा अलग होती है, एक आनंद की मूर्छा होती है, वो भी दिव्य आनंद। अकबर ऐसा सुने ही नहीं थे तो गिर गए। बाद में तानसेन जी गए और अकबर को सचेत किए, उठाए। तो अकबर पूछता है कि तानसेन क्या तुम ऐसा नहीं गा सकते हो, तुम ऐसा नहीं गा सकते हो। तो तानसेन जी ने कहा कि नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं गा पाऊंगा। क्यों क्यों नहीं गा सकते हो। तो तानसेन जी कहते हैं कि हुजूर मैं आप जैसे एक साधारण बादशाह को रिझाने के लिए गा रहा हूं, और स्वामी हरिदास बादशाहों के बादशाह बांके बिहारी को रिझाने के लिए गा रहा हूं, तो वैसे मैं कैसे गा सकता हूं। अरे जो गीत भगवान को खुश करने के लिए गाया जा रहा है वही गायक और दूसरा गायक यदि मनुष्यों को खुश करने के लिए गा रहा है तो उसमें उतना स्वाद कहां से आ सकता है, क्या रस आ सकता है। ये स्वामी हरिदास जी बांके बिहारी जी को प्रसन्न करने के लिए गा रहे, कृष्ण को प्रसन्न करने के। और तानसेन जी दिल्ली में आगरा में बैठे हुए इन थर्ड क्लास के लोगों को प्रसन्न करना चाहते, क्या गा पाएंगे। यदि कोई व्यक्ति भगवान को प्रसन्न करना चाहता है तो उसके जीवन की शोभा अपने आप बढ़ जाती है, अपने आप, क्योंकि वो विषय बहुत उत्तम लिया है गाने का। और वास्तव में किसी के पास गान कला हो या बोलने की कला हो तो विष्णु के गुण का वर्णन करना चाहिए, भगवान के लिए गीत गाना चाहिए। इस प्रकार किस बात पर एक कह दिया इधर, हम तो भगवान याद नहीं है, लिंक टूट गया। हाँ ध्रुव महाराज को महामंत्र जपने से, ओम नमो भगवते भगवते वासुदेव द्वादशाक्षर जपने से फिर भी मुझे लिंक नहीं मिलता। असल में अब हमें याद आ गई होगा, एक मौलवी जी थे तो वो कहते थे भगवान ने हमको बहुत बड़ा गुण दिया है, दो गुण भगवान ने हमको बहुत दिया है, मैं भगवान को धन्यवाद देता हूँ, अल्लाह को मैं आशीर्वाद धन्यवाद देता हूँ। तो लोगों ने पूछा कि क्या क्या आप में दो गुण है। एक गुण मेरी बहुत है कि मुझ में याददाश्त बहुत है, मेरी स्मृति शक्ति बहुत बलवान भगवान ने दिया है, और दूसरा दूसरा वो याद नहीं आ रहा है। ये गुण तो वही हालत मेरी है। उनको दो गुण दिया था वो तो एक भी नहीं था। उनकी स्मृति शक्ति बहुत तगड़ी थी और दो में एक बात याद नहीं। तो जो भी यहाँ पर यह बता बात है श्लोक के अनुसार कि विष्णु और श्रीयम च संपूजयेत, विष्णु की और श्री जी की पूजा करें, लक्ष्मी जी की पूजा करे। क्यों? अच्छा, यदि छसी सर्व संपदा, हाँ अब यहां पर मिल गया सब। यदि कोई वैभव चाहता है, धन चाहता है, वास्तव में कोई पैसा चाहता है या और भी सफलता चाहता है, वोट में जीतना चाहता है, चुनाव में जीतना चाहता है, सरकार मालिक बनना चाहता है, तो उसे चाहिए कि भगवान विष्णु की और लक्ष्मी जी की पूजा करें। देखेंगे अपने आप जीत जाएगा, ऐसा ऐसा देखा गया है। और जब चुनाव का समय आता है तो बड़े बड़े मिनिस्टर देखे जाते हैं कि इस साधु के चरण में प्रणाम करते हैं, उधर आशीर्वाद लेते हैं, उधर ये करते हैं, उधर ये करते हैं, तो खैर वो जीतते हैं लेकिन उनके आशीर्वाद से नहीं जीतते, ये विश्वास रखिए। वो तो काकतालीय न्याय से उनको जीतना था, जीत गए। जैसे काकतालीय न्याय का अर्थ है कि एक ताल वृक्ष था, ताल वृक्ष अब पुराना हो गया था, अब गिरने ही वाला था, उसकी जड़ें सड़ गई थी, दीमक लग गए थे, गिरने वाला था, तब तक उसी समय कौआ आकर के वृक्ष पर झाड़ पर बैठा, लोग देख रहे थे, तो लोगों ने हल्ला किया कि कौआ के बैठने से झाड़ गिर गया, गिरने वाला था। अपने कर्मानुसार कोई जीतने वाला होता है जीतता है, लेकिन हल्ला होता है इस साधु ने आशीर्वाद दे दिया, अरे अपने को क्यों नहीं आशीर्वाद दे देता, बहुत आशीर्वाद देने वाला बना। आशीर्वाद केवल कृष्ण दे सकते हैं, विष्णु दे सकते हैं, और किसी में शक्ति नहीं। भगवान जब आशीर्वाद देते हैं तो अनहोनी चीज भी हो जाती है, जो जीतने वाला नहीं होता है वो भी जीत जाता है, ये देखा गया है। और तो बाकी तो अपने अपने कर्मों का हिसाब है। काकतालीय न्याय से किसी साधु कोई जोगी को नाम हो जाता है, ये किया वो किया ये किया, कुछ नहीं कोई करता, कर सकता नहीं। तो इस तरह से विष्णु और श्री लक्ष्मी जी यही वरदौ आशीषां प्रभव उभव, ये दोनों समस्त मनोरथों की पूर्ति करने में समर्थ है। आशीष का अर्थ होता है मनोरथ। मनुष्य बहुत बहुत ही चाहता है हमको ये हो, ये हो, ये हो, ऐसा हो, ऐसा हो, इसको मनोरथ कर, आशीष कर, जितने आशीर्वाद उसी को आशीष को ही आशीर्वाद कहा जाता है। जब किसी का मनोरथ पूरा होने के लिए शुभ वचन कहा जाता है तो इसको आशीर्वाद कहते हैं, और किसी को थैंक्स दिया जाता है तो उसको धन्यवाद कहते हैं। तो हम लोगों में, मनुष्यों में, केवल धन्यवाद देने तक की सीमा है, आशीर्वाद नहीं दे सकते। आशीर्वाद तो कृष्ण देते हैं, भगवान आशीर्वाद देते हैं। आई तुझा आशीर्वाद, तो माँ का आशीर्वाद लगता है, पिता का आशीर्वाद लगता है वास्तव में थोड़ा, लेकिन महाशीशान, यदि बड़ा बड़ा आशीर्वाद चाहिए तो विष्णु का भजन करना चाहिए। तो आशीर्वाद के स्वामी हैं, और बरदौ और स्नेह से भरे हुए हैं, देते हैं, इच्छा पूरी करते हैं। अतः यदि किसी व्यक्ति को धन संपत्ति की, सफलता की इच्छा है तो उसे श्री और नारायण की पूजा करनी चाहिए, लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए, भजन करना चाहिए। अच्छा, इस प्रकार से भगवान की पूजा करें, नैवेद्य आदि अर्पित करें, और इसके बाद प्रणमे दंडवत भूमौ भक्ति प्रवेण चेतसा, 10 बारम जपेन मंत्रम ततः स्तोत्र मुदीरये, भगवान को प्रणाम करें अर्पित करने के बाद। कैसे प्रणाम करें? दंडवत, दंड का अर्थ डंडा, और रमेत का अर्थ प्रणाम, झुकना। जैसे डंडा को खड़ा कीजिए और ऐसे छोड़ दीजिए तो गिरेगा, गिरेगा तो सीधा गिरेगा, सिकुड़ेगा नहीं, जितनी लंबाई में है उतना ही गिरेगा, तो इसको दंडवत प्रणाम कहते हैं। दंडवत प्रणाम का हम लोगों को यह अर्थ नहीं लेना चाहिए, पक्का पर तब दंडा की तरह पटक दिए अपने लेकिन इसका अर्थ है कि जैसे डंडा बिल्कुल सीधा जाता है, सिकुड़ता नहीं, ऐसे हाथ आगे जाए, पैर पीछे जाए, और मस्तक जमीन में सटा रहे, छाती सटा रहे, घुटना सटा रहे, आंख से भगवान का दर्शन करे पहले, और कुछ बोले, मन से भी प्रणाम करे, इसको साष्टांग प्रणाम करते हैं। तो दंडवत प्रणाम करे भगवान के सामने, भगवान बहुत बड़े हैं, उनके सामने झुकना चाहिए, इस अधम शरीर को बार बार प्रणाम कराना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति मंदिर में रेगुलर रूटीन अटेंड करता है तो उसको अपने आप प्रणाम करने का बहुत अवसर मिलता है। जैसे देखिए, सामने अगर मंदिर में गया मंगला आरती में, तो प्रभुपाद जी को प्रणाम करो, उधर लक्ष्मी जी को प्रणाम करो, उधर तीन अल्टर में उनको प्रणाम करो, गौर निताई को, राधा रास बिहारी जी को, सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी को। अच्छा वो तो प्रणाम किए जाते जाते किए, पट हाँ पट खुलने पर किए। इसके बाद फिर प्रणाम की लाइन बनाई जाती है, जय जय जय, तो प्रणाम कर रहा है, जयकार कर रहा है, उठा नृसिंह भगवान की वंदना है। तुलसी वंदना में तुलसी जी का जस गाना, तुलसी जी की परिक्रमा करना, तुलसी में पानी देना, तुलसी की आरती करना, घूमना फिरना, दर्शन हो रहा है तुलसी प्लांट आंख से, आंखों के द्वारा तुलसी जी मन में आ रही हैं, वाणी से गुड़ गाया जा रहा है, पानी दे रहे हैं और परिक्रमा कर रहे हैं। कितना लाभ अपने आप हो जाता है, अपने आप हो जाता है। जो यहाँ करने के लिए लिखा गया है वो अपने आप होता है, अलग से स्वतंत्र कुछ करना नहीं पड़ता। सब लोग झुक रहे हैं तो झुकना ही पड़ेगा, है ना, वहां झुकना ही अच्छा लगता है। प्रणाम करना, इसके बाद जप करना करना, वैष्णवों को प्रणाम करना, फिर महामंत्र का जप करना, ये सब कार्य करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति दूर है, मंदिर में नहीं जा पाता है, तो घर में ही 4 बजे उठकर करे, उसको कौन रोकेगा, उसको उठ जाना चाहिए समय से और करना चाहिए और भगवान को प्रणाम करे। प्रणमे दंडवत भूम, भूमि पर दंडवत प्रणाम करे। कैसे, केवल नियम पूरा करने के लिए नहीं, भक्ति प्रवेण चेत सा, भक्ति से लबालब भरे हुए चित से प्रेम से प्रणाम करें, मन भी झुकना चाहिए और 10 बारम जपेन मंत्रम, 10 बार इस मंत्र का जप करना चाहिए, जैसे मंत्र पहले बताया गया। और ततः स्तोत्रम उदीरे, इसके बाद इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए जो आगे दिया जा रहा है। यह स्तोत्र 4.5 श्लोक में है। जुवान्तु विश्वस्य विभु जगतः कारणं परं, इयं हि प्रकृति सूक्ष्मा माया शक्तिर् दुरत्यया। सदा भगवान की पूजा भगवान का गुण गाते हुए करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर दोनों को प्रणाम करते हुए स्तोत्र जपा जा रहा है। जुवान्तु विश्वस्य विभु, आप दोनों, जुवान का अर्थ आप दोनों, इस विश्व के विभू हैं। विभू का अर्थ है कि सभी वस्तुओं के रूप में आप हैं और सब में समाये हुए हैं, सर्वव्यापक है, इसका अर्थ ये। आप दोनों नारायण और लक्ष्मी, आप दोनों इस विश्व में सब जगह समाये हुए हैं, इस विश्व को आप जन्म दिए हैं। अतः जगतः कारणं परम, आप संपूर्ण विश्व के, जगत के, जीवों के कारण हैं, आपका कोई कारण नहीं। भगवान सबको जन्म दिए हैं, सबको पोष रहे हैं, लेकिन भगवान को कोई जन्म नहीं दिया है। भगवान प्रकट होते हैं देवकी के गर्भ से, यशोदा जी के गर्भ से, जन्म नहीं होता है वास्तव में भगवान का। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, प्रकट होते। जगतः कारणं परम, आप दोनों इस विश्व के परम कारण हैं, जन्मदाता हैं, पोषने वाले हैं, लेकिन आपका जन्मदाता, आपका कोई दूसरा कारण नहीं है, स्वयंभू है, अपने आप भगवान है। एक बार एक व्यक्ति बहुत तर्क कर रहा था प्रभुपाद जी से, उन्होंने पूछा कि भगवान को किसने जन्म दिया। तो प्रभुपाद जी कहते भगवान का जन्म नहीं हुआ, भगवान अपने आप हैं। तो समझ ही नहीं रहा था, कहते नहीं नहीं, हम लोग तो देखते हैं कि हमारा जन्म हमारा बाप दिया, बाप का जन्म दादा दिया, ये दिया वो दिया, तो भगवान को कौन बनाया। तो प्रभुपाद जी ने कहा भगवान का यह स्वरूप है जिसको कोई जन्म नहीं दिया। वो समझ नहीं रहा था, लेकिन प्रभुपाद जी अंत में ऐसे कहा, अच्छा मान लो तुम जन्म की परंपरा पीछे ढकेलते जाओ तो कोई तो एक होगा जो अपने आप होगा, है कि नहीं। ये कॉमन सेंस से भी समझा जा सकता है, कोई होना चाहिए ना जो अपने आप होगा, कि बस जन्म दिलाते जाओ तो कोई पता ही नहीं चलेगा कुछ भी। एक तो अपने आप होना ही चाहिए जिससे सबका जन्म हुआ धीरे धीरे। तो भगवान का लक्षण ही है स्वयंभू, आत्मभू, वो अपने आप है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादि रादि गोविंद, वो अनादि, उनका आदि कोई नहीं है और वो सबके आदि है, सर्व कारण कारण, सभी कारणों के परम कारण, ये भगवान का स्वरूप। ये कहना चाहिए भगवान से, जुआंतु विश्वस्य विभु जगतः कारणम परम। और अब लक्ष्मी जी का वर्णन कर रहे हैं, इयम ही प्रकृति सूक्ष्म माया शक्तिर दुरत्यया। और ये प्रकृति है, बहिरंगा प्रकृति या अंतरंगा प्रकृति, दोनों के लिए शब्द प्रयोग किया जा रहा है। माया शक्ति, ये माया शक्ति है। माया शक्ति का क्या अर्थ है? मोहिनी शक्ति। भगवान की अद्भुत माया है कि जीवों के ज्ञान को ढक करके इसी संसार में सत्यता की प्रतीति करा रही। यह जड़ शरीर नाशवान है, मल मूत्र से भरा है, पर इसी में कितनी सौंदर्य बुद्धि कराती है माया। सत्य में असत्य बुद्धि, असत्य में सत्य बुद्धि करा करके सभी जीवों को इस तरह बंधन में रखी, संपूर्ण जीवों को, देवताओं को, असुरों को, मनुष्यों को। इसको कहते हैं मोहिनी शक्ति, माया शक्ति। माया का अर्थ है मोह। और दुरत्यया, इसको पार पार कर पाना बहुत कठिन है। दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्यया, माने वे प्रपद्यन्ते माया में तंत्र। लक्ष्मी जी का वर्णन आगे ये कहना चाहिए कि तस्या तस्या अधीश्वर साक्षात त्वमेव पुरुषः परः। और आप लक्ष्मी जी के साक्षात अधीश्वर हैं, इस माया शक्ति के आप मालिक हैं, आप स्वामी। ये भगवान के गुण हैं। और आप ही परम पुरुष हैं, पुरुषोत्तम। यह कहा जाता है कि परम पुरुष कारणोदक साई ने इस विश्व को उत्पन्न किया है, वास्तव में वो पुरुष आप ही हैं। त्वमेव पुरुषः परः, आप ही परम पुरुष हैं और आप ही माया के अधिपति हैं। त्वम सर्वज्ञ इज्जेयम्, आप सर्वज्ञ स्वरूप हैं। और ये लक्ष्मी जी पूजा है, पूजा का जो स्वरूप है लक्ष्मी जी का है। और क्रियेयम् फलभोग भवान, आप सभी यज्ञों के भोक्ता हैं फल के। तो यह क्रिया है जो यज्ञ के फल को उत्पन्न करती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। यज्ञ का फल क्या है जिसको भगवान भोगते हैं? ये विचारणीय बात। केवल शब्द बोल देने से कथा पूरी नहीं हो जाएगी। भगवान को यज्ञ फल भोक्ता कहा गया है और लक्ष्मी जी को क्रिया कहा गया है। क्रिया का अर्थ भक्ति में जो भी पूजा पाठ आदि होता है, कुछ क्रियाएं की जाती है, वो तो समझ में आता है। और फल है भगवान का प्रेम, भगवान स्नेह खाते हैं। यदि यज्ञ कोई करता है, जैसे सप्ताह यज्ञ चल रहा है, इसके फल के भोक्ता वास्तव में कृष्ण है। क्या फल इसका होता है? जीव जब भागवत सुनते हैं तो उनके हृदय में भगवान के प्रति स्नेह जगता है। और भक्तों के हृदय में जो स्नेह है वही है फल, उसको भगवान भोगते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। कोई भगवान से प्रेम करता है तो भगवान प्रेम के भूखे हैं। तो यज्ञ फल का मतलब है प्रेम और क्रिया का मतलब है भक्ति। क्रिया भक्ति, श्रवण कीर्तन आदि सब क्रियाएं, और इन सबों को करने से भगवान के प्रति जो स्नेह उमड़ता है, कृष्ण हमारे हैं, हमारे पुत्र हैं, हमारे पति हैं, हमारे स्वामी हैं, प्रियतम हैं, ये जो भाव होता है भगवान के प्रति, इसको यज्ञ फल कहा जाता है। इस फल के आस्वादक भगवान, वो चाहते हैं कि जीव हमसे प्रेम करे। वस्तु नहीं चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं। और प्रेम भागवत आदि सुनने से होता है। यदि महामंत्र का जप किया जाए, प्रणाम किया जाए भगवान को, भागवत सुना जाए, तो भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है। तो भगवान की भूख मिटानी हो तो भागवत सुनना चाहिए। भगवान चाहते हैं कि सभी के हृदय में मेरे प्रति प्रेम हो, उस प्रेम के आस्वादक हो। तो लक्ष्मी जी भक्ति हैं और भगवान तो प्रेम रस के भोक्ता। क्रिया और इज्जा दो शब्द का प्रयोग यहां किया गया। तो लक्ष्मी जी का स्वरूप है। गुण व्यक्ति रियम देवी, देवी लक्ष्मी जी प्रकृति के गुणों की अभिव्यक्ति है। जितनी वस्तुएं उत्पन्न हो रही हैं, वास्तव में लक्ष्मी जी बनी हुई हैं। गुण व्यक्ति इयम, ये जो है, वो जो मूर्ति रखी हुई है उसको कह कह करके दिखा करके बोलना चाहिए कि ये जो श्री जी हैं, ये गुण की अभिव्यक्ति है। मतलब पूरे जगत के रूप में ये प्रकट है। कोई खा रहा है, पी रहा है, दूध पी रहा है या कुछ भी खा रहा है, तो लक्ष्मी जी की कृपा से खा रहा है। और व्यंजको गुण भोग भवान, और इन गुणों को, वस्तुओं को प्रकट करने वाले आप हैं। गुण स्वरूप लक्ष्मी जी हैं, लेकिन इन गुणों को वस्तुओं को प्रकट करने वाले प्रकाशित करने वाले आप हैं, मूल सप्लायर भगवान है। मया अध्यक्षण प्रकृति सूर्यते से चला चलो, और भगवान गुण भुक है। इस संसार में प्राकृत वस्तुएं भी जो है उसके भोक्ता है भगवान, किसी भी चीज के, चाहे वो सब्जी है, चाहे दूध है, फल है, या कोई भी है, उसके मूल भोक्ता श्री कृष्ण विष्णु। ये समझने की बात, गुण भूख कहा गया, यज्ञ फल भूख भी भगवान को कहा गया, और गुण भूख, गुण का अर्थ है प्राकृतिक जो भी वस्तु है सबके स्वामी वे हैं, और उन्हीं की सेवा में इसको अर्पित करना चाहिए, वो भोक्ता है। तुम ही सर्व शरीर आत्मा श्री शरीर इंद्रियाशय, आप विष्णु को कहना चाहिए मूर्ति को देख करके, हे नाथ आप सर्व शरीर आत्मा, समस्त शरीर धारियों के भीतर आत्मा, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट, जो चेतन शक्ति है जीव में शरीर में वो वास्तव में भगवान है, या जो जीव है वो भी भगवान का ही अंश है। ममई वंशो जीव लोके जीव भूत सनातना, जो इस शरीर के भीतर जो चेतना है आत्मा है वो है भगवान, जिन्हें परमात्मा कहा जाता है, सब में समाये हुए है। और श्री जी शरीर है, इंद्रिय हैं और अंतःकरण है। बहुत सुंदर बात कही जा रही है, लक्ष्मी जी शरीर प्रकट की है, इंद्रियां प्रकट की है, और अंतःकरण प्रकट की है, और उसमें चेतना भगवान प्रकट करते हैं। सर्व शरीरी आत्मा और श्री जी शरीर इंद्रिय आशया, इस तरह अपनी शक्ति से युक्त होकर के भगवान इस विश्व का निर्माण करते हैं, पालन करते हैं, इसका संयम करते हैं। लक्ष्मी जी का सदा सहयोग है इस विश्व के संचालन में, पालन पोषण में, खिलाने पिलाने सब में, इसीलिए लक्ष्मी जी के साथ भगवान की पूजा करनी चाहिए। नाम रूपे भगवती, इस विश्व में जो भी रूप है नाम है वो सब लक्ष्मी जी का दिया हुआ है। और भगवान क्या है, प्रत्ययस्त्वपाश्रय, प्रत्ययस्त्वपाश्रय, और भगवान नाम रूप को प्रकाशित करते, प्रकाशित करने का मतलब मूल कारण वे हैं, नाम रूप वे प्रकाशित करते हैं, और अपाश्रय वे सबके आधार हैं और स्वयं निराधार हैं। निराधार का मतलब उनका कोई आधार नहीं है। आप इसी संसार में देखिए, हम लोग सब खा रहे हैं, सांस ले रहे हैं, कपड़ा पहन रहे हैं, लेकिन जब इस संसार में हम लोग आए थे तो क्या कपड़ा था हमारे पास? कोई भी गिलास नहीं था, लोटा नहीं था, झोला नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, कुछ नहीं था। यहाँ आने पर सब मिलता है, और यहाँ से जाते समय सब छीन लिया जाता, कोई लेकर नहीं जा सकता है ना, कुछ भी नहीं लेकर जा सकता। बैंक में रुपया छूट जाता है, कार छूट जाएगी, यही स्वजन छूट जाते हैं, ऑफिस छूट जाता है, दुकान घर सब छूट जाते हैं, पर यहां आते हैं तो सब मिलता है। तो जितने लोग यहां आए वो कुछ लेकर के नहीं आए, पहले के लोग भी ऐसे ही खाली हाथ आए थे, नंग धड़ंग रोते हुए जन्म लिए, कोई कुछ लेकर के नहीं आया। और यहां सब बहुत बहुत चीज इस्तेमाल करते हैं, तो फिर छोड़कर चले जाते हैं। तो कौन इन सब वस्तुओं को बनाया है, कौन आधार है सबका? विष्णु, और उनका आधार कोई नहीं है, अपाश्रय, वो आश्रयहीन है। आश्रयहीन का मतलब उनका कोई आश्रय नहीं, वो सबको पोष रहे हैं, उनको कोई किसी की जरूरत नहीं है पुष्ट होने की। जन्म लेने के पहले ही सभी जीवों के लिए सारा बंदोबस्त है, व्यवस्था है भगवान की, है ना? क्या जन्म ले ले करके कहा जाए, मान लीजिए किसी का जन्म हो रहा है, कहा जाए ए बच्चा अपना घर बनाओ, कपड़ा सियो, बुनो, जूता बनाओ, ये सब करो, तो जीव तो मर जाएगा सुनकर। अच्छा, जो लोग कर रहे हैं माता पिता या लीडर नेता, उनसे कहा जाए कि भगवान की बनाई हुई वस्तु को टच मत करो, जन्म के समय तुम क्या लाए थे उसका इस्तेमाल करो, वो क्या करेगा, वो तो मर जाएगा। बात बनाना होता है, भाषण करना होता है, तो कहता है हम कर्मठ उम्मीदवार है जनता के लिए, हम इस बंबई को स्वर्ग बना देंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, और फिर भी बंबई की गंदी नालियां जो बैतरणी जैसा दिखती है नदी और भरी पड़ी है, वैसे ही झोपड़पट्टी रह गई, गंदी नालियां रह गई, सब हो गई, और स्वर्ग बनाने वाले वे नरक में चले गए, इसको स्वर्ग बना रहे थे। इस तरह का प्रॉमिस करते हैं। तो कुछ भगवान की भक्ति का प्रचार करो, जहां तहां प्रचार करो, नाम संकीर्तन हो, रथ यात्रा हो, जिससे लोगों की मति भगवान में लगे, तब ये स्वर्ग बन सकता है। और किसी प्लान से स्वर्ग बनने वाला नहीं है, भगवान के भजन से सब सफलता होती है। तो यहां यह बात बताई जा रही है कि भगवान अपाश्रय, भगवान का आश्रय कोई नहीं है और सबके आश्रय है आधार। अतः अब वर मांग रही है स्त्री पत्नी, जथा जुआं त्रिलोकस्य वरदौ परमेष्ठिनौ तथा म उत्तम श्लोक संतु सत्या महाशिषा। हे नाथ, हे दोनों ईश्वर, आप तीनों लोकों में जितने जीव हैं, ब्रह्मा आदि देवता और जो भी जीव, सबको वर देने वाले आप हैं। त्रिलोकस्य वरदौ, सबके जीवन की सारी आवश्यकताओं को आप दोनों देते हैं। परमेष्ठिनो, आप दोनों विश्व के परम नियंता हैं, कंट्रोलर हैं, सबसे श्रेष्ठ। जैसे आपके पास बहुत धन है, आपके पास कंट्रोलिंग पावर है, सब कुछ है, तो और आपकी पवित्र कीर्ति है, उत्तम श्लोक, बहुत पवित्र कीर्ति है, तो इसी तरह से आपके प्रभाव से, आपके आशीर्वाद से हमारे जीवन में भी जो महा आशीष है, बड़ी बड़े जो हमारे मनोरथ हैं, वो सब सत्य हो जाए, पूरा हो जाए आपकी कृपा से। आप में ये सब ऐश्वर्य है, तो आपकी कृपा से हमारा भी मनोरथ पूरा हो, ऐसी कृपा कीजिए। यह कह करके, यह स्तोत्र पढ़ करके पुनः श्रीनिवास की पूजा करे, श्री के साथ भगवान की पूजा फिर करे। और ये पूजा करने के बाद तब जो अर्पित किया है नैवेद्य, उसको निःसारण करे, हटा ले। तब निःसार्योपहरणम दत्वा आचनम आचमनम अर्चित, भगवान को आचमन कराए, भोग लगाने के बाद आचमन कराना चाहिए, मतलब मुंह धुलाना, हाथ धुलाना, और प्रसाद को हटा ले। और इसके बाद स्तोत्र के द्वारा फिर स्तुति करे, स्तोत्र चाहे यहाँ का अथवा गोविंदम आदि पुरुषोत्तम हम भजामि, और बहुत से स्तोत्र हैं, उनका पाठ करे। फिर कहते भक्ति प्रहवेण चेतसा, पर जो भी पूजन करे भक्ति से, प्रेम से करे। और यज्ञ में उच्छिष्ट जो बचा हुआ है, अर्थात भगवान का जो प्रसाद है, नैवेद्य है यज्ञोच्छिष्ट, उसको सूंघ करके और रख ले, अवघ्राय यज्ञोच्छिष्ट। इसे मुख्य रूप से कहा जा रहा है जो पुष्प मिलता है, पुष्प भगवान का प्रसाद वगैरह, उसको सूंघे और सूंघ करके फिर भगवान की पूजा करें। पतिं च परया भक्त्या महापुरुष चेतसा, पति की पूजा करें इस बुद्धि से कि हमारे पति साक्षात भगवान है, भगवान की बुद्धि से उनका स्वागत करना चाहिए, पूजा करना चाहिए, मतलब सम्मान करना चाहिए। पत्नी का कर्तव्य भगवान की पूजा बताई जा रही है, इसके साथ ही बताई जा रही है कि पतिं च परया भक्त्या महापुरुष चेतसा, महापुरुष मतलब विष्णु भगवान, अपने पति को भगवान मान करके उनकी पूजा करनी चाहिए, उनको खुश करना चाहिए। प्रिय तैस्तय उपनमेतर, पति को जो जो प्रिय है, पति का प्रिय करो, उनको वस्तु दे, प्रसाद दे, चाहे और भी सुख दे उनको, पति के लिए बिछौना बिछाना, पंखा झलना, चरण दबाना, उनको जो वस्तु प्रिय है वो लाला करके देना। पर ध्यान रखना चाहिए कि वो पति इसी तरह का फर्स्ट क्लास का वैष्णव होना चाहिए, नहीं तो पति कहेगा कि हमको बियर लाओ तो क्या करेगा, ऐसे नालायक की पत्नी तो उसके साथ ही नरक जाएगी। इस तरह से तो ये तो वैष्णव का धर्म सिखाया जा रहा है, तो पति की पूजा करे, पति को जो प्रिय है वो वस्तु दे दे करके, और पति क्या करे, प्रेमशील स्वयं पति, और पति को चाहिए कि पत्नी के प्रति प्रेम करे, प्रेमशील हो जाए। बिभ्रियात सर्व कर्माणि पत्न्या उच्चा उच्चा नीचा, और पत्नी के कार्यों में, भगवान की पूजा में वो मदद करे, पत्नी का सारा काम वो करे। पत्नी भगवान की पूजा में लगी है तो पति को चाहिए कि सभी काम को वो धारण करे। धारण करने का मतलब ये है कि अब और घर के कई काम है, जैसे घर साफ करना और सब करना, वो पति करे। स्वयं पद यह लिखा गया और वो बेचारी भगवान की पूजा में है तो और सारा काम थोड़े करें। भगवान का स्तोत्र पढ़ रही है और पढ़ रही है, तो पति का कर्तव्य है कि और काम करे और पूजा में जो जो सामान चाहिए उसको बाजार से मंगा कर वन से मंगा करके प्रस्तुत रखे। पत्नी को ही नहीं खरीदना पड़े या फूल देखना पड़े कि अब सवेरे की पूजा में कहाँ से फूल आएगा, कहाँ से अगरबत्ती आएगी, नैवेद्य के लिए घी चाहिए, शक्कर चाहिए, सब कहाँ से आएगा। तो पति स्वयं ही जुटाया करे, सप्लाई करे। विभ्रिया सर्व कर्माणी, पत्नी ऊंचा बचानी चाहिए, यहां तक उसके जो भी कर्म है छोटे या बड़े, उच्च अवच, अवच करते नीच, छोटा छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, पत्नी का सारा काम पति करे। अगर पत्नी इस तरह व्रत में है, भगवान के भजन में है, तो करना चाहिए। मान लीजिए पत्नी भगवान का भक्त है, उठकर के मंदिर में चली गई है, तो पति को चाहिए कि कम से कम घर तो साफ करे, वो तो भजन में कही गई है, ये सोकर क्या करेगा गधा, क्यों सोएगा। इसी के लिए पति बना हुआ है, पत्नी का काम करना चाहिए। वास्तव में पत्नी को समय नहीं है कि वो भगवान की भक्ति से दूसरा काम कर सके, तो उसमें पति का कर्तव्य है कि विभ्रियात सर्व कर्माणि, विभ्रियात करके धारण करे, पत्नी का और जो भी काम और दिनों में था उसको धारण करे, वो सब काम ठीक से करे और पत्नी के लिए सब चीज जुटाया करे, क्योंकि इसमें उसको भी फल मिलेगा। लिखा गया है कृतम एक तरे रापी दंपत्योर उभयो रापी भवे तिथि से सब। अगर पति पत्नी में एक व्यक्ति व्रत करता है तो उसके फल दोनों को मिलते हैं, ऐसा नहीं बांट करके आधा आधा, पूरा उसको पूरा उसको, ऐसे मिलता है। ये स्पिरिचुअल जगत का हिसाब है, पूर्ण से पूर्ण मादा या पूर्ण मेवा वशिष्यते, भगवान ऐसे हैं कि उनमें से पूरा निकाल दिया जाए तो पूरा ही बचता है। पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णम एव अवशिष्यते, आदाय मैंने लेकर के, पूर्ण में से पूर्ण निकाल दीजिए तो पूर्णम एव अवशिष्यते, पूर्ण ही बचता है। ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान की पूजा का इतना फल हुआ तो आधा पत्नी ले ली आधा वो ले ली, ये हिसाब नहीं है। पूरा उसको मिलेगा, पूरा उसको मिलेगा, आधा सुधा का हिसाब नहीं। कृतम एक तरेणापी, एक तरेण एक के दर पत्नी करे चाहे पति करे, एक कोई करता है तो दोनों को फल मिलता है। यही हिसाब पिता और पुत्र में, गुरु और शिष्य में भी चलता है। यहां पर एक उदाहरण दिया जा रहा है, तो कृतम एक तरेणापी, एक के द्वारा किया गया दंपत्य उभयोरपी, दोनों को फल मिलता है। पत्न्याम कुर्याद अनारहे आम पति रेतत समाहिता, और पति को तैयार रहना चाहिए कि यदि व्रत करने में पत्नी अयोग्य हो गई, बीमार हो गई या रजोधर्मासिक हुआ, तो उस समय पति ही पूजा करे, इसको तैयार रहना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं पत्न्याम अनर्हयाम, यदि पत्नी अयोग्य हो गई है, अशुद्ध हो गई है चार पांच दिन के लिए या बीमार हो गई है, कुछ हो गया है, तो पति उस समय व्रत करे। ये सब जप करना, पाठ करना, भोग लगाना, ये पति करे। तो शुरू से ही पति को एक्सपर्ट होना चाहिए भगवान की पूजा करने में, नाम जप करने में, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि पत्नी सालों भर तो ऐसे रहेगी नहीं, कुछ न कुछ तो उसमें अयोग्यता आएगी, अशुद्ध होगी या बीमार होगी, कुछ होगा, तो उस समय चाहिए कि पति वो पूजा करे, घर का काम भी करे और वो भी करे, पूजा दोनों। यह ऐसा नहीं है कि पराधीनता बताई जा रही, वास्तव में तो प्रेम का संबंध है, परस्पर एक दूसरे का सहयोग करते हुए भगवत पथ पर बढ़ना है, भगवान की तरफ बढ़ना है, जीवन को इस तरह संयमित करना चाहिए। विष्णु और व्रतमिदं बिभ्र न विहन्यात् कथंचन, भगवान विष्णु का यह व्रत है, इसको धारण करके कभी इसको त्यागना नहीं चाहिए, जीवन भर ले चलना चाहिए। क्या है, निषेध को पालन करने में तो कोई दिक्कत है नहीं, जो विधि है उसके पालन में थोड़ी सी कठिनाई होती है, छोड़ने में क्या कठिनाई है। जैसे मान लीजिए किसी को कहा जाए कि बियर मत पियो, तो एक दिन छोड़ दिया, अब क्या उसमें मेहनत है ना। पूजा करने में तो रोज रोज मेहनत है, जप करने में 16 माला बहुत मेहनत पड़ता है, लेकिन छोड़ने में क्या मेहनत है। एक दिन कोई चीज छोड़ दिया, छोड़ दिया, किसी को गाली नहीं देना है, नहीं देना है, न हिंसा भूत जाता है, किसी जीव की हिंसा नहीं करनी है, किसी को साप नहीं देना है, झूठ नहीं बोलना है, इसमें क्या मेहनत है। परंतु झूठ बोलते बोलते जिसको आदत हो गई है, उसको सत्य बोलना हिमालय टांगने के बराबर लगता है, वो आदत हो जाती है। कुछ लोगों की तो बहुत आदत होती है झूठ बोलने, बात की बात में झूठ बोलना। और मैं कल कहा था कि झूठ बोलने में स्त्रियों का नंबर हमेशा आगे रहता है। देखा हुआ सत्य में बता रहा कि इस तरह से चलता है, लेकिन अगर एक बार मेहनत कर लिया जाए तो बाद में आसान हो जाता है। झूठ नहीं बोलना है, नहीं बोलना है, भगवान का नाम जपना है, भगवान की बात करना है, और कम से कम पति से तो भूलकर झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये स्त्री को बहुत सावधान रहना चाहिए। तो जो कुछ भी है भगवान की पूजा से सब ठीक हो जाता है। विष्णु और व्रत निधन विभ्रम न विहन्यत कर, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। ये ऐसा व्रत नहीं है कि इसको कुछ दिन किया कुछ दिन नहीं भी किया, ये किया वो किया, करना चाहिए। क्योंकि जैसे हम सांस लेते हैं, सांस लेना नहीं छोड़ते, वैसे भगवान से प्रेम करना नहीं छोड़ना चाहिए। जप करना, ये करना करना, पूजा पाठ भोग लगाना, ये रोज का काम है। और विप्रा स्त्रियों वीरवती सुरगंध बलिमंड नहीं अर्चेद अहरह भक्त्या देवम नियम मास्थित। और भगवान की पूजा तो रोज करे इस तरह से, इसके साथ ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए वीरवती स्त्रियों की। वीरवती स्त्री कहते हैं पुत्रवती स्त्री अथवा पतिवती स्त्री, जो सौभाग्यनी नारी है, जिसके पति हैं और पुत्र हैं, उन स्त्रियों की पूजा करनी चाहिए। कैसे? माला द्वारा, फूल की माला पहनानी चाहिए, सुगंध बलिमंडन, चंदन का लेप करना चाहिए उसको, और कुछ उपहार देना चाहिए, कोई फल केला या कोई हलवा कुछ देना चाहिए, और मंडन अलंकार यदि संभव है तो अलंकार भी देना चाहिए। यदि स्त्री धनी है तो अन्य स्त्रियों को, ब्राह्मणों को दे अलंकार, पूजा करें, और भगवान की इस तरह प्रतिदिन पूजा करें। उद्वास्य देवं स्वेधान्नि तन्निवेदितम् अग्रतः अद्यात् आत्मविशुद्ध्यर्थं सर्वकामर्धये तथा। और अंत में बता रहे हैं रोज रोज दैनिक नियम में कि दिन पूरा होने पर देव को उद्वास्य, भगवान को वहां से हटा करके जहां पूजा कर रहा है वहां से ले करके उनके मंदिर में अल्टर में कर देना चाहिए। तो धामनी कहा गया, धाम है वास्तव में भगवान का मंदिर जो है, खास उनका जो घर उसको धाम कहा गया है। तो भगवान के धाम में अल्टर में सिंहासन पर भगवान को बिछा करके, तब इसके बाद भगवान का बचा हुआ प्रसाद जो भोग लगाया गया था उसको खाए। अद्यात क्यों खाए, किस उद्देश्य से खाए, इसलिए कि नहीं कि अब भूख लगी है इसलिए खा ले, आत्म विशुद्ध अर्थम और सर्व काम वर्धय, अपने को शुद्ध करने के लिए कि भगवान का ये प्रसाद खाऊंगी तो मैं शुद्ध हो जाऊंगी और मेरी सारी कामनाएं पूर्ण होंगी भगवान का प्रसाद खाने से, मुझे सारी विद्धियां मिलेंगी, ये भगवत प्रसाद का फल है। जीव जो भगवान का प्रसाद खाता है तो शुद्ध होता है, जीवा पर जय प्राप्त होता है, जीवन में शुद्धि होती है। तो आत्म विशुद्धि अर्थ हम अपने को शुद्ध करने के लिए और सर्व संपत्ति प्राप्त करने के लिए भगवान का प्रसाद खाना चाहिए, सौभाग्य प्राप्ति के लिए प्रसाद खाना चाहिए। भगवान का प्रसाद भगवान का स्वरूप माना गया है, बहुत नम्रता के साथ और भगवान के प्रसाद का गुण गाते हुए प्रसाद खाना चाहिए। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लिखा शरीर विद्या जल जड़न रेता है काल, यह है प्रसाद की प्रशंसा। प्रसाद भगवान का सामने आवे तो उसका गुण गा करके तब खाना चाहिए, यह नहीं कि बकरी जैसा गाय जैसा बस आया कुछ सोचा भी नहीं वे खाना चाहिए थी, अभी खड़े खड़े तो इधर उधर, तो अच्छा है वैसे भोजन को लोग वैसे ही खाएं, क्योंकि तो भगवान का प्रसाद होता नहीं। भगवान के प्रसाद को खाना चाहिए पहले वंदना करके, प्रणाम करके, अपनी शुद्धि के लिए और समृद्धि के लिए। एतेन पूजा विधिना मासं द्वादशायनं नित्वा थोपचर साध्वी कार्तिके चरमे हने। इस प्रकार से 12 महीने तक एक साल भगवान की पूजा करे। दोनों क्यों कह रहे हैं? 12 महीने तक कह दिए तो उसका साल मतलब हो ही गया, लेकिन हायनम 12 महीने पूरा साल इस तरह से भगवान की पूजा करे और गीत गावे, स्तोत्र पढ़े, जप करे। इसका अर्थ यह है कि कभी कभी मलमास पड़ता है, 13 महीना हो जाता है। तो इसके द्वारा ये सिद्ध कर रहे हैं 12 महीने कह करके कि जिस साल मलमास न लगे, पुरुषोत्तम अधिक मास न लगे, उसी साल इसको करना चाहिए। एक अर्थ ये है कि 12 महीने 13वां महीना हो जाता है, अधिक मास उसको कहते हैं। अच्छा, तो कार्तिक के चरमे अहनी, कार्तिक का जब महीना पूरा हो रहा हो, कौन अमावस्या, यही हुआ ना? नहीं, हम कभी भूल जाते हैं, गुजराती कैलकुलेशन को समझ नहीं पाते। तो माघ है, शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा को चालू हुआ है, तो पूर्णिमा को बंद किया जाएगा है अमावस्या को। अच्छा, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, राइट। हाँ, शुक्ल पक्ष चालू हो, अमावस्या के बाद चालू हुआ, तो फिर कार्तिक अमावस्या को ही पूरा होना चाहिए, क्योंकि कार्तिक शुक्ल पक्ष को ही यहाँ पर मार्ग विशेष कहा गया है। तो कार्तिके चरमे यानी कार्तिक का जो अंतिम दिन है, मतलब गुजराती कैलकुलेशन जो अमावस्या वैसे आए क्या कार्तिक अमावस्या 12 महीने क्यों नहीं होगा? क्योंकि कार्तिक अमावस्या के बाद ही चालू हो जाता है मार्ग शीर्ष। आप ध्यान से सुनिए, चालू इस तरह 12 महीना हो गया, तो स्वभूते पर उपस्पृश्य कृष्ण व्यर्थ पूर्व पय श्रुते ने जो लिया चरुणा सहस्त्र, फिर प्रतिपदा को, मार्ग शीर्ष की प्रतिपदा को अब आचमन करके शुद्ध होकर के फिर कृष्ण की पूजा करे। कैसे? पूर्ववत, जैसे रोज रोज करता था वैसे करे। और उस दिन एक काम करे पति कि पाक विधि से, जो विधि है उस विधि से चरु बनावे, खीर बनावे, अग्नि में आहुति दे, द्वादश आहुति, और ब्राह्मणों का आशीर्वाद ले, ब्राह्मण लोगों को खिलावे पिलावे, वो लोग आशीर्वाद दे तो उनके आशीर्वाद को सिर से लेना चाहिए, और उनको भक्तिपूर्वक सिर से प्रणाम करे, और वो जब आज्ञा दे कि ठीक है जजमान अब खाओ, तब खाए। पहले ब्राह्मणों को खिला करके वैष्णवों को इस तरह से, इसके बाद खाए। आचार्यम अग्रतः कृत्वा, पहले गुरु को खिला लेना चाहिए आचार्य, वहां जो व्रत कराने में मदद कर रहे थे, गुरु का ही मतलब ये। तो आचार्यम अग्रतः कृत्वा, गुरु को, आचार्य को पहले खिलावे, और इसके बाद मौन होकर के अपने बंधुओं के साथ प्रसाद खाए। जतवा, हल्ला करते हुए नहीं खाना चाहिए, जतवा मतलब मौन होकर खाना चाहिए। सह बंधु भी दद्यत पत्नी चरो से सुप्रजस्तो सुभगम, और इसके बाद पति उस बचे हुए खीर को जो हवन करने से बचा हुआ है उसको अपनी पत्नी को खाने के लिए दे, तो वह चर, वह खीर बहुत सुंदर संतान का कारण होता है और स्त्री के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य देने वाला होता है। चरु खीर को कहते हैं, विधि पूर्वक बनाया जाता है, उसमें घी ज्यादा रहता है, ससर्पी सा सर्पी और थोड़ा सा गुड़ रहता है, चीनी नहीं, शुगर नहीं, गुड़, तो गुड़ डाल करके और घी डाल करके और खीर बनावे और उसे अपनी पत्नी को खाने के लिए देना चाहिए। तो वो सुंदर पुत्र, सतपुत्र और सत सौभाग्य देने वाला होता है। अब इतना कह करके श्रील सुखदेव गोस्वामी इस व्रत के या इस प्रसंग के श्रवण का फल बता रहे हैं। धीरज रखना चाहिए, आज ही बर बैठना है तो कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। एत चरित्वा विधिवत व्रतम विभो अभीप्सितार्थम लभते पुमानिह स्त्री त्वेतदास्थाय लभेत सौभगम श्रियम प्रजाम जीवपतिम जसो गृहम। श्रील सुखदेव गोस्वामी अंत में कहते हैं, कोई भी व्यक्ति विभु के इस व्रत का आचरण करके भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला यह पुंसवन व्रत जो करता है तो वह पुमान वह व्यक्ति पुरुष अभीप्सितार्थम लभेतर, उसके जीवन में जो भी अभीष्ट है बड़ा से बड़ा उद्देश्य वो लभते प्राप्त करता है इस व्रत को करके। ये बहुत कठिन नहीं है, भक्त लोग तो सालों भर व्रत कर सकते हैं। अरे झूठ नहीं बोलना, किसी जीव की हिंसा नहीं करना, यही सब इसमें करना है और भगवान का जप करते ही हैं। हूबहू यही मंत्र न बोल करके महामंत्र बोला जाए, गीत गाया जाए, वैष्णव गीत, वो भी सब वही है, और भगवान की पूजा करें। देश काल के अनुसार इसको ऐसे समझ लेना चाहिए। तो कोई भी व्यक्ति जो भगवान की भक्ति करता है, इस तरह से नियम पालन करता है, तो उसके जीवन के बड़े बड़े मनोरथ अपने आप पूरे हो जाते हैं भगवान की कृपा से। भगवान को किया गया प्रणाम व्यर्थ नहीं जा सकता, पूजा व्यर्थ नहीं जा सकती है, उसका फल बनता है। जब सामान्य कर्मों का ये सब फल बनता है तो भगवान की पूजा का बहुत बड़ा फल बनता है। एक बार की सच्ची घटना लोग बताते हैं कि एक साधु एक गृहस्थ के यहाँ आया करते थे। एक व्यक्ति था उस घर में जो कभी भगवान का नाम नहीं लिया था, कभी नहीं। वो साधु थोड़ा तगड़े थे, मोटे स्वभाव के, मोटे शरीर वाले, वो ले गए उसको, उस व्यक्ति को, चलो मुझको स्नान करा लाओ नदी में। तो गया, स्नान तो कराने गया, लेकिन विष्णु शब्द कभी नहीं कहता था। तो स्नान करने में उन्होंने कहा, थोड़ा आप भी आओ साथ में स्नान करो, साथ में स्नान करो। वो स्नान करने चला, तब तक साधु उसका गला दबाकर पानी के अंदर मारने लगे, दबाए उसको पानी के अंदर। वो कह रहे, छोड़ रे, जान निकल गई। उन्होंने कहा कि एक बार बोल विष्णु, पानी के बाहर निकाल कर कहे कि बोलते हो कि नहीं, बोलोगे कि नहीं विष्णु। तो एक बार डर कर कह दिया विष्णु, तो छोड़ दिए डर करके। वो जाना कि मार देगा, जान तो बोलो भगवान का नाम बोलो, तो बोल दिया, बाकी सब पाप किया था। जब मर गया, जमराज जी के पास उसको ले जाया गया, तो जमराज जी ने उससे पूछा कि पहले पाप का फल भोगना चाहते हो कि पुण्य का। तो उसने कहा कि हमने कोई पुण्य भी किया है क्या? याद करने पर भी ये समझ में नहीं आ रहा था। तो जमराज जी ने कहा, हाँ एक बहुत बड़ा पुण्य तुमने किया है। तो वो कहा, तब नरक में मरना ही है, पाप का फल भोगना है तो पहले पुण्य कहीं दे दो। तो उसने पूछा, क्या पुण्य किया? तो जमराज जी ने कहा, तुमने एक बार भगवान का नाम लिया है, विष्णु कहा है, तो ठीक है, जो भी तुमको दो चार रुपया देना है या कुछ भी करना हो दो, तो ये हल्का सा पुण्य है। तो जमराज जी विचार करने लगे कि एक बार भगवान के नाम लेने का क्या फल होता है, फल देना था इस क्रिया का, एक नामोच्चारण का फल उनको देना, अब वो क्या करो। तो महान वैष्णव आचार्य, उन्होंने सोचा कि अरे इसका तो बहुत बड़ा फल होता है, कितना फल होता है हम क्या जानते। तब उन्होंने तुरंत ब्रह्मा जी को फोन लगाया, ब्रह्मा जी के पास गए और पूछा कि स्वयंभू, हे देव, ये बताइए कि भगवान विष्णु के एक नाम के उच्चारण का क्या फल होता है। ब्रह्मा जी कहे, रही तो हमको भी नहीं, हम जानकारी नहीं है। तो भगवान का नाम जपने में तेज शिव जी भगवान है, वो बहुत जपते रहते, उनको पता होगा, उनसे पूछा जाए। तो उनको भी ले लिए जमराज जी, ब्रह्मा जी को, कि चलिए तब आप पूछिएगा उनसे। कैलाश गए, कैलाश में पूछे कि एक बार भगवान के नाम लेने का कितना फल होता है। तो शिव जी ने कहा कि भाई मैं नाम तो जपता हूँ, लेकिन इसकी महिमा, इसका फल तो मैं नहीं जानता, तो बहुत अनंत फल होता है। तब उन्होंने कहा कि नारद जी से पूछना चाहिए, नारद जी जानते हैं भगवान का नाम गाते हैं। तो ब्रह्मा जी, शिव जी और जमराज जी नारद जी के पास गए, नारद जी से पूछे कि इसका क्या फल होता है एक बार नाम उच्चारण का। तो उन्होंने कहा कि अभी इसका बहुत फल होता है, मैं नहीं बता सकता कितना, मैं तो नाम कीर्तन करता हूं लेकिन ये सब चीज जानता नहीं। तो उन्होंने कह दिया कि ये काम कीजिए, छोड़िए, ये भगवान विष्णु से ही चलकर पूछा जाए। भगवान विष्णु से चलकर पूछा जाए कि एक बार आपका नाम उच्चारण का क्या फल होता है। चलो गए, भगवान ने स्वागत किया, पूछा कैसे आए। तो जमराज जी ने पूछा कि प्रभु हम लोग ये पूछने आए हैं कि आपके एक नाम के आपके नाम के एक बार के उच्चारण का क्या फल होता है। भगवान ने कहा कि इसको वैकुंठ में छोड़ दीजिए, आप लोग जाइए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। मतलब एक बार नामोच्चारण करने का अर्थ है वैकुंठ धाम रखा। ये भगवान ने निर्णय कर दिया, जाओ हम क्या कहें, तुम लोग जाओ अपना काम करो, इसको जानने पड़े। एक बार भगवान का नाम लेने वाला इस तरह मुक्त हो गया, मोक्ष प्राप्त किया, भगवान की दास्ता लिया। तो जो रोज हरे कृष्ण जपते रहते हैं माला पर कई बार, उनके संगति में क्या संदेह है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये बहुत समर्थ क्रियाएं हैं, बहुत बलवान क्रियाएं हैं, भगवान का नाम उच्चारण करना, प्रणाम करना, भागवत सुनना, भगवान का गीत गाना, कीर्तन करना, बहुत बलवान क्रिया है। इसका फल इतना बड़ा होता है कि भगवान को भी अपने अधीन कर लेता है, भगवान भी वश में हो जाते हैं। और जो क्रियाएं हैं ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग देती हैं, ये देती हैं वो देती हैं, लेकिन वैकुंठ देने की क्रिया ये भगवान को अपने वशीभूत करने की क्रिया, वो भक्ति। तो यहाँ पर इसका फल बताते हुए कहते हैं कि अभीप्सितार्थम लभते पुमान। ये व्रत करके, भगवान को प्रणाम करके, गुण गा करके, स्तोत्र पढ़ करके व्यक्ति का सारा मनोरथ पूरा हो जाता है पुरुष का। और स्त्री तो, और यदि स्त्री इसको करे, एतद आस्था, यदि स्त्री इस व्रत को करती है तो लभे, वो प्राप्त करती है क्या क्या, सौभगम श्रीयम प्रजाम जीवपतिम जसो गृहम। यदि स्त्री करती है, पत्नी करती है, तो उसको सौभाग्य प्राप्त होता है। सौभाग्य का बहुत अर्थ हुआ, सुभग से सौभाग्य शब्द बना हुआ, उसे धन आदि तो प्राप्त होता है तो लिखा ही गया, उसे जस मिलता है, उसका शरीर सुंदर होता है, वो बड़े से बड़े कामों में सफल हो जाती है, जो काम को टच करते करना चाहती है सफल हो जाती है। श्रीयम, उसे संपत्ति प्राप्त होती है। प्रजा, उसे पुत्र प्राप्त होता है। जीवपति, उसका पति सदा जीवित रहता है, मतलब अखंड सौभाग्यवती होती है ये करके। जीवपति का अर्थ है उसका पति हमेशा जीवित रहता है। तो पति की आयु को बढ़ाना हो तो भगवान का नाम जपना चाहिए। कभी कभी पत्नी परेशान होती है कि पति को ये रोग है वो रोग है, या क्लिनिक में ले चलो, हॉस्पिटल में ले चलो, अरे जरा नाम जप करके देखो क्यों नहीं वो आरोग्य को प्राप्त हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। जीवपति, रोग भी दूर होता है, आगे बताया जाएगा। जसो, और उस स्त्री को बहुत बड़ा जस मिलता है। जस का अर्थ है कि वो ऐसे ऐसे कार्य करती है कि अपने आप उसका नाम बढ़ता है। जसो और गृहम, उसे बहुत अच्छा घर मिलता है। भगवान की भक्ति करने से अपने आप उसको बहुत अच्छा गृहम घर मिलता है। आजकल तो सबको इच्छा होती है हमको घर अच्छा मिले, फ्लैट मिले, ये मिले, भक्ति करो ना अपने आप मिलेगा। भक्ति करने से घर मिलेगा, जस मिलेगा, पति जीवित रहेगा, प्रजा मिलेगी, धन मिलेगा, सौभाग्य मिलेगा। बताइए, छोटे छोटे उद्देश्य की पूर्ति के लिए लोग कितना वर्ष तपस्या करते हैं, स्कूल में कॉलेज में पढ़ते रहते हैं पढ़ते रहते हैं, फिर भी नौकरी नहीं मिलती। और एक साल ये व्रत करके तो जरा देखो, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, सब मिलेगा। और बड़े आनंद का मार्ग है ये, आनंद से जपा जा सकता है, भजन किया जा सकता है, पर आदमी ये नहीं कर सकता। और सब काम, ये इंटरव्यू दो, ये पढ़ाई करो, ये करो, ये करो, ये करो, और कहीं सफलता नहीं मिलती। और क्या चाहिए जीवन में? सौभाग्य चाहिए, धन चाहिए, प्रजा चाहिए, और पति का आरोग्य चाहिए, पति स्वस्थ रहे, जस रहे, गृह अच्छा मिले, अच्छा लोकेशन हो, अच्छा फ्लैट मिले, अच्छे जगह पर रहे, ये सब कामना होती है। ये भगवान का नाम जपने से अपने आप मिल जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितना फल है इस व्रत का, जानते कौन व्यक्ति बोल रहा है? सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, गंगा जी के तट पर उस महातीर्थ में, सुखताल में बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं। पर लोगों को विश्वास नहीं होता, करना चाहिए, करके देखना चाहिए। भगवान को प्रणाम कीजिए, महामंत्र का जप कीजिए, प्रसाद खाइए, और जो नहीं करने लायक काम है उसको मत कीजिए, मत खाइए, मत पीजिए। क्यों नहीं ये सब प्राप्त होगा? जस, गृह, पति का स्वास्थ्य, पुत्र, धन, सौभाग्य सब मिलते। कन्या च विन्देत समग्र लक्षणं वरं पवीराहत किल विषागतिम्। और जो कन्या अविवाहित है अभी, उसको यह व्रत करने से या ये कथा सुनने से समग्र शुभ लक्षणों से युक्त पति मिलता है। ये कन्या के लिए लाभ दिया। इस कथा में बहुत सी कन्याएं आई हुई हैं। वास्तव में भगवान के आशीर्वाद से सभी शुभ लक्षणों से युक्त पति मिलता है, भगवान की भक्ति करने से। केवल पति मिलना ही ठीक नहीं, पति लोफर मिल जाए, शराबी मिल जाए, बदमाश मिल जाए, तो उसे लाभ क्या है? समग्र लक्षणम वरम, अपने आप मिलता है। भगवान के हाथ में सब कुछ है, भगवान सब रेखा लिखते हैं और किसी को किसी से मिलाते हैं। किसी कन्या को अच्छा पति मिलाना, ये भगवान के हाथ में है सब कुछ। जो देखते हैं कि ये हमें प्रणाम करती है, हमारे नाम जप कर रही है, केवल हमारा प्रसाद खाती है, शुद्ध आचरण है, खास करके प्रणाम करती है और नाम जप कर रही है, तो भगवान उस पर जरूर कृपा करते हैं और उस कन्या को बहुत शुभ लक्षणों से युक्त पति मिलता है। और तू अबीरा हत केल विषागति, और जो स्त्री वीर से शून्य है, वीर माने पति, जो पत्नी विधवा है जिसके पति मर चुके हैं, वह इस जीवन में बहुत पवित्र रहती है ये व्रत करने के कारण, और अंत में वैकुंठ प्राप्त करती है। अबीरा हत किल विषागति, उस विधवा में कोई पाप नहीं रहता है। पहले कोई पाप भी हुआ होता है, ये व्रत करने से, भगवान का नाम लेने से, सब धुल जाता है, खत्म हो जाता है, और निष्कलंक गति को प्राप्त करती है। हत किल विषाम गतिम, हत किल विषा गतिम, गतिम का अर्थ है वैकुंठ, भगवान के पास चली जाती है। और मृत प्रजा जीव सुता धनेश्वरी सुदूर भगा सुभगा रूप मद्रम। और मृत प्रजा जीव सुता, यदि किसी स्त्री को पुत्र होता है या बेटी होती है और होते ही मर जाते हैं, कुछ काल के बाद मर जाते हैं, यह कोई व्रत करे या भगवान को प्रणाम करे, जप करे, तो उसका पुत्र जीवित रहता है, नहीं मरता है। कभी कभी ऐसा सुना जाता है कुछ स्त्रियों के पुत्र होते हैं फिर मर जाते हैं। यदि चाहती है कि हमारा पुत्र जीवित रहे बहुत काल तक, तो उसे ये व्रत करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। केवल महामंत्र का जप कीजिए, ये सब हो जाएगा, इतना कंसेशन है वास्तव में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धनेश्वरी सुदुर्भगा सुभगा रूपमग्र। और कोई स्त्री ऐसे अर्थ किया जाता है कि धनी है परंतु सुदुर्भगा है, अच्छा नहीं है। धन ही सब कुछ नहीं है, कोई किसी स्त्री के पास धन है लेकिन सौभाग्य नहीं है, कोई उसका नाम है न कुछ है, न किसी क्रिया में सफल होती है, शरीर आदि में भी रोग है सब, तो वो सुभगा भवती इति से, वह बहुत सुंदर रूप प्राप्त करती है और उसका सौभाग्य बढ़ जाता है वो स्त्री यदि व्रत करे तो। अथवा सुदुर्भगा सुभगा रूपम अग्रम बिंदेत विरूपा, कोई कुरूप स्त्री है तो यह व्रत करके या भगवान की भक्ति करके उससे बहुत सुंदर रूप प्राप्त होता है। विश्वास रखिए, ये सब चीजें ऑपरेशन से या मेडिकल साइंस से नहीं हो सकता है। हम लोगों ने पढ़ा है कि कीड़ा होता है, एक कीड़ा तो उसको भृंग पकड़ता है और पकड़ करके कोष में बंद करता है, तो कीड़ा भय के कारण उसका चिंतन करते करते वही रूप धारण कर लेता है। तो यहां सुखदेव गोस्वामी एक बहुत क्रांतिकारी बात बता रहे हैं कि यदि कोई कुरूपा स्त्री है, यदि भगवान की भक्ति करे, इस तरह से पूजा करे, तो वह सुभगा रूपम अग्रम बिंदेता, बहुत सुंदरी बन जाती है व्रत करने से, शरीर पूरा चेंज हो जाता है। ऐसा भागवत में उदाहरण है और भगवान ने तो कृपा किया कुब्जा पर कि उसको छुआ खींचा और लक्ष्मी जी के समान सुंदर हो गई। तो भगवान के नाम में भी वही ताकत है, भगवान के पूजा में वही बल है। कोई इस तरह से स्त्री भगवान की पूजा करती है तो परम सुंदरी बन जाती है। बिरुजा विमुच्यते यह आमयावी, आमय का अर्थ है रोग, आमयावी का अर्थ है रोगी, कोई रोगी है निरंतर रोग से ग्रस्त रह रहा है, तो वह विशिष्ट रोग से भी मुक्त हो जाता है। बिरुजा विमुच्यते, विशिष्ट रोग मतलब कैंसर या और भारी भारी रोग जितने हैं वो मुक्त हो जाएगा रोग से ये व्रत करने से। अरे वास्तव में सवेरे उठे, स्नान करे, भगवान का नाम ले, भगवान की कृपा होगी, क्यों नहीं रोग से मुक्त हो जाएगा। और जो 10-10 बजे 12-12 बजे तक सोवे वो क्यों नहीं स्वस्थ आदमी भी मरेगा, रोगी हो जाएगा। और भगवान का आशीर्वाद एक अलग चीज है, विलक्षण। भगवान के आशीर्वाद से व्यक्ति, रोगी व्यक्ति बड़े बड़े रोगों से मुक्त हो जाता है। इंद्रिय कल्प दे हम और उसे बहुत स्वस्थ समर्थ इंद्रियां प्राप्त हो जाती हैं। भगवान की भक्ति करने से आंखें काम करने लगती हैं ठीक से, कान सुनने लगता है, उसे बोलने की शक्ति, चलने की शक्ति बढ़ जाती है। और भक्ति न करे तो भक्तों की तुलना में देखा जाए तो जनरल पब्लिक जल्दी मरती है, रोग दूर होगा ही नहीं। और भगवान की भक्ति करने से स्वस्थ व्यक्ति रहता है। जुहू मंदिर में भक्त है, दादारास बिहारी मंदिर, करभाजन प्रभु, तो हम लोग कल बातचीत कर रहे थे उनसे, तो हमने कह दिया कि समुद्र की हवा में बहुत ताकत, फ्रेश हवा मिलती है। और हमने कह दिया कि हम तो बम्बे आते हैं तो हमारा एक ये भी लोभ होता है समुद्र तट पर घूमने। तो वो कहते हैं, महाराज मैं 10 साल से घूम रहा हूँ सवेरे, मुझे कोई रोग नहीं हुआ। वो करभाजन प्रभु जी कर, आप थे ना साथ में, थे हरि लीला प्रभु साथ में, वो बता रहे 10 साल से कोई रोग नहीं। रोग तो घूमने से नहीं हुआ, वास्तव में तो भगवान का जप कर रहे हैं, मूल कारण ये है, लेकिन और भी प्राकृतिक कारण होता है शुद्ध हवा का लगना। तो बड़े से बड़े रोग से व्यक्ति भगवान की पूजा करके मुक्त हो सकता है। इंद्रिय कल्प दे हम, देखा गया है कि भक्ति करने पर जो पहले आंख से दिखाई नहीं पड़ता था ज्यादा दिखाई पड़ने लगा। ये देखा गया है। और पैर में चलने की शक्ति, बोलने की शक्ति, कान में सुनने की शक्ति, इंद्रियों में शक्ति आ जाती है। कल्प दे हम, देह समर्थ हो जाता है। एतत् पठन अभुदे च कर्मणि अनंत तृप्ति पित्री देवता नाम। और इस प्रसंग को केवल कोई पढ़े, कर्म विवाह के अवसर पर, श्राद्ध के अवसर पर, या कोई अच्छा काम हो रहा है उस समय पढ़े, तो इसके पढ़ने से वो काम बिल्कुल कंप्लीट माना जाएगा, ये पूरा हो गया, ठीक से पूरा हो गया, इसमें कोई कमी नहीं रह जाएगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तुष्टा प्रयच्छन्ति समस्त कामन, देवता और पितर प्रसन्न हो जाते हैं और ये प्रसन्न होकर के समस्त कामन प्रयच्छन्ति, सारी कामनाएं दे देते हैं। भक्त जो जो चाहता है, जीव जो जो चाहता है, देवता और पितर दे देते, भगवान तो देते ही हैं। आगे कहते हैं होमावसाने हुत भुक श्री हरिश्चर, जब अंत में हवन किया जाता है, यज्ञ ये व्रत पूरा हो जाता है, तो सारे देवता और सारे पितर उस भक्त को आशीर्वाद देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। और हुत भुक श्री हरिश्चर, हवन के भोक्ता भगवान श्री हरि और लक्ष्मी जी भी दोनों आशीर्वाद देते हैं, उसकी इच्छा पूरी करते हैं। सारे देवता और पितर आशीर्वाद देते हैं, श्री जी आशीर्वाद देती हैं और हरिश्चर और भगवान आशीर्वाद देते हैं। ये बात कह करके सुखदेव गोस्वामी अंत में समाप्त करते हैं, राजन महन मरुताम जन्म पुण्य दीतेर व्रतम चा विहितम। हे महाराज, मरुद गणों का ये जो जन्म का प्रसंग है, महत महान है और पुण्यम है, जीव को पवित्र करने वाला है, भगवान की भक्ति देने वाला है। दो विशेषण लगा रहे हैं, राजन महत मरुताम जन्म पुण्यम, मरुद गणों का जन्म पुण्यम है और महान है, और दीतेर व्रतम चा विहितम महत्ते, और दीति के द्वारा पुंसवन व्रत जो किया गया वो भी बहुत महान है, बहुत महान व्रत है, क्योंकि इस व्रत के केंद्र बिंदु है श्री कृष्ण विष्णु। भगवान को हमेशा नाम जपना, पूजा करना, प्रणाम करना, कहां किसी का नाम आया इसमें, ये है महत, ये है महान। तो अपने जीवन को यदि वास्तव में सुखी करना है, महान बनाना है, तो भगवान के भक्ति में लगे रहना चाहिए, खासकर नाम से जुड़ना चाहिए। भगवान के नाम का उच्चारण होता रहे तो सब काम ठीक हो जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और भगवत प्रसाद खाना, यहाँ लिखा गया है कि आत्म विशुद्ध्यर्थम और सर्व विद्धये, सब संपत्ति प्राप्त करनी हो और अपने को शुद्ध करना हो तो भगवान का प्रसाद खाना चाहिए। खाने में क्या मेहनत है बताइए? खाने में तो मेहनत है नहीं, लेकिन प्रसाद खाना चाहिए। तो भगवान का नाम खाना, प्रसाद खाना, ये ठीक है। अच्छा, आज ये बात तय हुई थी कि कुछ भक्तों की दीक्षा होगी, लेकिन उसका एक अंग पूरा कर दिया गया। मकर संक्रांति से पहले दीक्षा मैं नहीं देता हूँ, तो वो लोग जो कार्य किए ठीक है, उन भक्तों की दीक्षा बाद में होगी। मैं वास्तव में जिसके लिए दीक्षित हूँ वो तो काम करूँ, मुझे कथा कहना था, बहुत बहुत काम तो एक साथ हो नहीं सकता है। तो मैं सोचा, मैं अपना धर्म समझा कि इस कथा को ठीक से पूरा किया जाए। तो ये है पुंसवन व्रत, जिसमें भगवान की भक्ति की महिमा गाई गई है। तो इससे शिक्षा लेनी चाहिए कि भगवान कृष्ण से जुड़ना है और शुद्ध आहार करना है, जीवन में सब कुछ मिलेगा। अब जी यहां तक कहा गया कि गृहम लभे पर घर प्राप्त होता है, कितने लोग घर ढूंढते रहते हैं, अच्छा घर नहीं मिलता है, चाहे ज्यादा दाम लगता है तो पैसा नहीं है तो नहीं मिल पाता है। तो जब गृहम तक के लिए सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि मिलेगा भगवान की भक्ति करने से, तो और क्या बाकी रहा। छोटी वस्तु का नाम ले रहे हैं, बड़ी बड़ी तो बहुत मिलती है। तो इस तरह से विश्वास करना चाहिए, भगवान का जप करना, प्रणाम करना। इस भागवत सप्ताह के द्वारा यही प्रेरणा मिलती है कि जैन के प्रकार कृष्ण से जुड़ना चाहिए। तो इस आयोजन को सफलीभूत बनाया बहुत से भक्तों ने मिल करके, और बहुत बड़ी सफलता तब मालूम हुई जब इतनी बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ कृपा करके आए। आपके आने से ही कथा अच्छी हुई, वास्तव श्रोता के भक्ति का प्रभाव होता है, तब कथा भी अच्छी निकलती है, स्वादिष्ट निकलती है। सभी भक्त कहते हैं कि बहुत अच्छी कथा हुई, बहुत अच्छी कथा है, क्योंकि बहुत से लोग आए, उनकी संवेद भक्ति का प्रभाव है। आप इस कथा में आए इसके लिए मैं भूरी भूरी धन्यवाद देता हूँ, और श्री श्री राधा गिरधारी जी से कामना करता हूँ कि आपकी मति भगवान में लगी रहे और आप सुखी रहे, परिवार सुखी रहे, और जिन लोगों ने इसमें सहयोग किया है, जो अथक प्रयास किए हैं, उन लोगों को भूरी भूरी धन्यवाद। और सबसे पहला धन्यवाद श्री जगजीवन प्रभु जी को मैं देता हूँ, जिनके शुद्ध संकल्प से और जिनकी भक्ति से, जिनके प्रयास से, मेहनत से आप सबों को, हमको भी भगवत कथा कहने सुनने का अवसर मिला, उसके लिए तो हम लोग ऋणी हैं इनके। और इनके बहुत से सहयोगी जैसे मधुसूदन प्रभु जी और रासमंडल प्रभु जी और भी बहुत से कांग्रेगेशन के लोग हैं, बहुत से नवजुवक युवती इसमें बहुत सहयोग किए हैं, प्रसाद देने में इतनी शांति रही, किसी दिन कोई शिकायत नहीं आई, सेवा किए, जो भी जिस तरह से सहयोग किया है और आया है इस कथा को सुनने के लिए, उन सबकी मति भगवान में लगे, सब सुखी रहे, यही मेरी शुभकामना है।